من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الهي انتقني بالهدى والهمني التقوى. جو آپ کی واٹر بریک کھائی گئی نا میں نے نہیں کھائی. آقا وزیدی کی مرہون ملت گئی. ایکچولی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مرد ان مشکلات کا سواں حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتے جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. برعکس ایک خاتون, یعنی خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ مدرسے میں نکلنا, مدرسے کے لیے نکلنا, اسپیشلی آپ لوگ جو بہت ارلی نکلتے ہیں. میں تو 3 بجے گھر سے 3:06-7 پہ نکلی ہوں. بہتوں کا دوپہر کا کھانا قضا, چائے قضا ادا کی نیت کے بغیر. اور سب سے بڑی بات, یعنی خود میں گرچہ میں تو بہت حقیر ہوں اپنے آگا کی نسبت, لیکن میں محسوس کرتی ہوں جس ذہنی بے فکری سے وہ کام کر سکتے ہیں نا, میں سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی آپ سب بھی محسوس کر دیں گے کتنا ٹینشن فری گھر جا کے پیر لمبے کر کے کو جلدی سے چائے لے آؤ, چائے پیتے ہیں, اس کے بعد روٹیوں کی ٹینشن تو عورتوں کی روٹیاں سالن چاول فلانی چیز آدھی رہ گئی, ڈھمکانی چیز آدھی رہ گئی. میں نے ایک دفعہ, مجھے کسی عالم ربانی نے کراچی میں بہت احترام سے کہا, خواہ تھوڑی سی خدمت کر جائیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے ان کی ساری تقریر سن لی. اس کے بعد میں نے کہا, آپ کو کبھی درس میں ٹک ٹکی ہوئی ہے کہ دال جو چھوڑ کر آئی تھی کوکر میں وہ بھی کچی ہوتی ہے؟ ہنسنے لگے. میں نے کہا, کبھی کسی درس کے آخر میں کوئی آپ کو روک کے مسئلہ پوچھے تو آپ کو کب جاؤں گی, کب آٹا گونوں گی, کب روٹیاں پکاؤں گی؟ وہ خود آیا, گیس آ نہیں رہی. تو یہ ایشوز تو خواتین کے ہیں. میں واقعی دل سے قدردان ہوں ان خواتین کی جو مدرسوں میں آتی ہیں. بہت پروردگار, پروردگار ان شاء اللہ آپ کو بہت بہت زیادہ اجر دے اور آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ سب کے گھر والوں کو حوصلہ دے کہ وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں سنڈے مدرسہ میں اسپیشلی ایک دعا کروائی تھی ان کے, ان گھر والوں کے لیے جو بھیجتے ہیں. اگر ان کی, ان کا تعاون نہ ہو, ماں باپ, بہن بھائی, شوہر, بچے, یہ سب تعاون نہ کریں تو ہمیں قدم چلنے کے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے. اچھا, میں آج کے درس میں بھی آپ کو ایک دو ٹپس بتاؤں گی. گھر سے میرا موضوع محض اوور آل جنرلی پرسکون زندگی گزارنے کے راز ہیں, لیکن ایک مدرسے کی طالبہ یا ایک مبلغہ یا ایک مدرسہ یا ایک بہت ہی چھوٹا سا خدمت گزار دین اسلام کا کس طرح سے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرے, کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے کہ گھر والے اس کا خوش پناہ ہو جائے. یعنی کبھی کبھی دو الگ الگ رویے ہوتے ہیں نا, ہاں آ گئی مدرسے سے. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں تفریح کر رہے ہیں, ان کو 1.5 گھنٹے ایک لیکچر اور 1.25 گھنٹے دوسرا لیکچر سننا پڑے تو اچھے اچھے سر کے درد میں, جن کو سر کا درد نہیں ہوتا ان کو بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن نارملی ہمارے ایک سوچ ہے, لوگ سمجھتے ہیں مدرسے جانا یعنی عیاشی کرنا, گھر کے کاموں کی چھٹی منا کر خود تو چلی گئی تھی, میں دسترخوان بھی لگایا اٹھایا بھی, اب میں کچھ نہیں کرنے والی, اب وہ آ گئی ہے نا نوابزادی مدرسے سے, اب اس سے کہیں باقی کا کام کرے. یعنی اسپیشلی جہاں دو بہنیں ہیں, دیورانی نشانی کا رشتہ تو برا ہے لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہنوں کے بھی دل تنگ ہیں. تو اس طرح کی سوچ میں انشاءاللہ آگے مینشن کروں گی کس طرح سے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کریں کہ وہ گھر والے ہی ہمارے مشوق ہوں, ہمیں تشویق کرنے والے ہوں کہ اچھی بات ہے میں نہیں جا سکتی تم تو جاتی ہو. اور سب سے بڑی بات ہم خدا سے مانگیں. سب سے زیادہ مجھے ان خواتین پر کبھی رحم آتا ہے جن کے شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بیگم مدرسے جائے, حجاب کرے اور یہ خیمہ پہن کے میرے ساتھ جاؤ گی, میں تو تمہیں پارٹی میں نہیں لے کر جاؤں گا, میرے سارے کولیگس کی بیویاں بڑی اسمارٹ ہیں, تم یہ کیا بھاؤ بلّا بن کے پھرتی رہتی ہو, یہ اتار دو دوپٹہ لے لو, اسٹونز والے کوٹ پہن لو, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہمیشہ خدا سے دعا مانگیں, یا مقلب القلوب, دلوں کو پھیرنے والے اللہ, بولے میرے دل کو پھیرا اس کے دل کو بھی پھیر دے, تاکہ جب ہم ساتھ چلیں تو یاد رکھیں میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے کہ ایک پہیہ ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا. دونوں پہیے اسی وقت کامیاب رہتے ہیں جب دونوں پہیے ایک ہی میٹیریل کے ہوں. گاڑی کو ہائی وے پر چلانا ہے تو ہائی وے کے مزاج کے ہوں, گاڑی کو کچی سڑک پہ چلانا ہے تو کچی سڑک کے مزاج کے ہوں. جب دونوں پہیوں کے اندر بیلنس نہیں آتا, اچھا ہم نے خدا سے یہ بیلنس مانگا, یاد رکھیں خدا دنیا اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا, لیکن دین صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو طلب کرتا ہے. تو ان شاء اللہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسی مومنہ ہے جس کا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو خدا تو نے میرے دل کے اندر اپنے دین کی محبت ڈالی, چلنے والے دن اپنا آرام اپنے کام سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھی ہوں, پروردگارہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ ہمیں ہمارے کچھ پناہ. سمجھنے کی بات ہے, دلوں کو پھیرنا اس کے لیے تو بہت آسان ہے, اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہم کیا پیدائشی اتنے خدمت گزار تھے؟ जब जैसे ही पहला दिन नवे साल का था, आस्तीने चढ़ाकर बैठे हैं, मोजे पहनकर बैठे, नहीं, हमारे दामनों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इश्कालात हैं, जिस झोली में सोच सेज हुए उस झोली का फैलाना है। अल्लाह का एहसान, परवरदिगार ने उस वक्त में हमारी हिदायत की असबाब फराहम किए। परवरदिगार इंशाल्लाह बाकी अफराद के लिए भी, स्पेशली हमारे अहले खाना के लिए भी हिदायत के असबाब फराहम करें। लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हुई थी औसानी खलीली बे सबा वाली रिवायत, सलमान फारसी की वो मारूफ रिवायत, जिसमें पैगंबर खुदा ने सात चीज़ों की वसीयत की थी। अब इसके बाद में 6-7 के करीब पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान किस्म के नुस्खे हैं। अच्छा, ये नुस्खे मैंने बाज़ जगह बाज़ चीज़ें जो है ना वो डील की किताब है दोस्त बनाइए रसूख कमाइए, मैंने इन दरसों की तैयारी में जहाँ रिवायात से मदद ली, उस्ताद जाफर सुभानी की किताबें हैं, कुछ अजीम लोगों की कामयाबी के राज इस टाइप की किताबें, वहीं पर नॉन इस्लामिक स्कॉलर्स शाहराह ज़िंदगी पर कामयाबी का कदम, कामयाबी का सफ़र, बशीर जुमा साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेमन है, नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा आपको, उनकी किताब है, उसके अंदर बड़ी अच्छी उन्होंने टिप्स दी हैं। या डी जो साले खालसतन एक नॉन मुस्लिम राइटर है, स्कॉलर है, उसकी भी किताब है दोस्त बनाइए रसूख कमाइए परेशानियाँ भगाइए, स्पेशली हम औरतें को दावत देती हैं। अबू ज़फ़र ज़ैन साहब ने एक जगह मिसाल दी है ना कि कुछ औरतों को दुख उधार लेने की आदत होती है, आए हैं शाम में शोहरे नामदार तो बैठी हैं चूड़ियाँ चढ़ा के रोने वाली शक्ल बना के, क्या हुआ तुम्हें, छन्नो खाला की बेटी का रिश्ता टूट गया, हाय अल्लाह मेरे हलक से चाय नीचे नहीं जा रही, अरे भैया तुम अपने घर की परेशानी छोड़ के छन्नो खाला हो, हम औरतें हैं ऐसी, यानी मैं इस चीज़ में आप एक्सेप्ट करें, हम सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने दुख तो हमारे कहीं अल्लाह का शुक्र है कभी कभी आते हैं, हम लोगों के दुखों में बैठ के घंटों रोते कूड़ते सड़ते रहते हैं। उसकी मिसाल के तौर पे आपको पता चला वदूद भाई ने तुझसे शादी कर ली, खुदा गारत करे ऐसे मर्दों को, ये करे वो करे फलाना नहीं, अब एक घंटा बोलती रहेगी ये क्या मसला है, हम दूसरे के मामले के अंदर क्यों दूसरे की मुश्किलात को उधार लेने के चक्कर में रहते हैं, या अभी ये शादी तो निमट गई अगली शादी पे क्या होगा, मुस्तकबिल की परेशानियों का सोचते रहते हैं कुड़ते रहते हैं, जिस अल्लाह ने अभी परेशानी से निकाल दिया कल भी निकालेगा, जिस अल्लाह ने अभी मुझे परेशानी से निकाल दिया, यानी आप सोचिए औरतों की 90% मुश्किलात खुद साख्ता होती, स्पेशली औरतों की, चाहे हम परेशान होते नहीं हैं करते ही रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, इस तरह तो चले बीसी निकल आई थी कमेटी निकल आई और कर करा के गुजारा हो गया, हाय खुदाया जुलाई में फिर शादी सर पे खड़ी है, आप यही कपड़े पहन लें, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके दिखाया, हालांकि एक जाकिरा बाहर नाम तो एक जाकिरा का ही आता है हमारे माशरे में, मैंने किसी की शादी का मिलाद पढ़ा और अनाउंस किया कि अगर आप मिलाद वाले कपड़े शादी में पहन के जाएंगे तो कोई आपको कैथोलिक ग्राउंड से बाहर नहीं निकालेगा, हमारे सोचा था कि बड़ी मशहूर जगह है शादियों के हवाले से, और वही सूट पहन के चलिए मुझे किसी ने भी निकाला, कभी ऐसा होगा कि हम कोई सूट रिपीट करें तो हमें आप किसी भी लॉन में जाएं किसी भी मैरिज हॉल में जाएं तो आपको बाहर निकाल दिया जाए, हम खुद ही हसास होते रहते हैं हसास से कंपनी के मारे में सबने नए कपड़े पहने हैं, लोगों को याद भी नहीं रहता, शादी के वक्त लोगों को सिर्फ खाने की फिक्र होती है, कुछ लोग दुल्हन को देखे बगैर वापस आ जाते हैं इसी चक्कर में, तो खाना खा लिया अल्लाह खैर अल्लाह रात के इस तरह की, लेकिन हम खुद साख्ता परेशानियों का शिकार रहते हैं, वल्लाह आलम सवाब हमें खुदा पर भरोसा नहीं है, जिस खुदा ने अभी निकाला वो कल भी निकालेगा, लेकिन हम आने वाले फिक्र, अच्छा मैंने बास खवातीन को देखा है अभी बच्ची 13-14 साल के भी से उसकी शादी की फिक्र करने लग जाएंगी, रिश्तों के टो में लग जाएंगी, परेशानियां मोल लेती रहती हैं हर चीज़ के एतबार से, हम अड़ोस पड़ोस वालों की परेशानियों पर इतने दुखी गमजदा सा दुआ नहीं करते, छन्नो खाला की बेटी का रिश्ता टूट गया, हाँ बैठ के नमाजे हजरत जहरा पढ़े उस सगासे वाली जिसमें वो सजदे में पढ़ते ना वो पढ़े, वो नहीं पढ़ेंगी बस घंटा रोती रहेंगी कुड़ती रहेंगी चाय पे चाय पीती रहेंगी पान छालियाँ खाती रहेंगी, ये नहीं करेंगी मुसल्ला बिछा कर बैठ जाए इतनी छन्नो खाला से प्यार है तो चलो लो बैठो इस सगासा पढ़ो, वो मकातिब बिन सुलेमान वाला मुखातिब है ना मुनाजात खमसा अशर से पहले मकातिब ने कहा है अगर दुआ कबूल ना हो तो रावी पे लानत करे, दुआ शुआ नहीं करनी, उनकी बेटी का ऑपरेशन था नाकाम हो गया, अरे बैठ के या सलामों की तस्बीह पढ़ो बजाय इसके इतना वावेला, हम औरतें इतनी सी परेशानी होती है उसको माइक्रोस्कोप में रख के हाथी जितना करते हैं और फिर हाथी की तरह शोर मचाते हैं, लेकिन बहरहाल अब मैं आपको 6-7 टिप्स दूं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, बेहतरीन सोच इंसान अपने आप को जायजुल खता समझे, हमारा शायद मेरा चले मैं आपकी बाबत कहने का हक ही नहीं रखती, शायद मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं समझती जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैंने एक आर्टिकल बहुत देर पहले पढ़ा था 0.2 है, उसमें उन्होंने बताया कि रूम की सल्तनत में जब किसी वली अहद को तख्त
पर बिठाया जाता था, तो उसका एक उस्ताद, एक तालिक, एक मुअल्लिम टाइप की चीज होता था, वो भी उसके सराहने खड़ा रहता था। जैसे ही वो कोई गलत डिसीजन देता था ना, वो उसके कंधे पर हाथ रखता था, झुकता था, कान में कुछ कहता था और वो शख्स अपना डिसीजन वापस ले लेता था। बड़ी मुद्दत और रूम के लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या कहता है वलीअहद के कान में। बिलाखरे राज ये खुला कि उसको कहता है कि तुम भी एक इंसान हो, इंसान है, इसमें जायजुल खता है। कुछ लोग अड़ जाते हैं, घंटों बहस करेंगे, नहीं हमने किया तो गलत खो नहीं सकता। बड़े प्यार से कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन जुमला, मैं गलत हूँ आप सही हूँ। सारे का सारा फसाद खत्म हो जाता है, सारे का सारा झगड़ा, मजा झगड़े का करने का पता है गाइस, सामने वाला भी ऐसा हो, मैंने एक कहीं से चार सुनाई, उसने चार सुनाई, मैंने 20 सुनाई, गालियों तक बात चली गई, हाथापाई तक बात आ गई और इतना फसाद फैल गया। नहीं सामने वाला कहते अच्छा सॉरी मैं गलत थी आप सही है। मैंने अबू जफर जैन ही ने नफसियाती जैसे एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है। एक शौहर बड़े गुस्से में था, बीवी से कहता है मेरे पास एमए की डिग्री है, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा तो हो बात खत्म। उसके मिजाज का जून खुद ही सितंबर में बदल गया, तो हैंडल किया जा सकता है। बाज अगर हमारे पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि बसावकात हाथों से बांधी हुई गिरे दांतों से भी नहीं खुल पाती, वो तलख कलामी बात को वहां तक ले जाती कि रिश्ते टूट जाते। और मुझे तो खुद नहीं पता था, मुझे पिछले मंडे पता चला हमारी वसीयत की क्लास में नजफी हॉल में कि लोग वसीयत कर देते हैं मेरे जनाजे में फुलां को ना बुलाया जाए, फुलां बहन भाई है। मैंने कहा तुफ ऐसी वसीयत करने वाले। और मजे की बात है औरतें थी क्या मैं बोलूँ, और मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन ऐसी जज्बाती होती है कि हज़रत ज़हरा ने भी तो वसीयत की थी कि फुलां फुलां मेरे जनाजे पर ना है। असल काबिल मुआसा नहीं है इंसान किसी मासूम को किसी गैर मासूम के साथ इस तरह से टैडी करे, जबकि हमें शायद हजारवां हिस्सा भी हज़रत ज़हरा की सीरत तय्यबा का सही माना में नहीं पता, तो हम इस तरह से टैली नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को जायज़ खता सकते। अच्छा इसका एक मैं आपको आसान सलूशन बताऊं, आप ये सब भूल जाएंगे, जितने थके हुए जहन के साथ आप सुन रही हैं आधा दर्द तो यहीं से बाहर निकल जाएगा। चलो छुट्टी, घर जाकर के ही ज़हरा बहुत अच्छा बोली थी, घर वालों ने मुझसे क्या तो कुछ बोल तो नहीं थी, पता नहीं क्या था यार, इतनी शदीद नींद आ रही थी ना, यकीन करो मुझे तो क्लास में मेरा दिल चाहता मैं टेक लगाऊं और सो जाऊं। लेकिन आप एक पेपर पढ़ लिख कर अपनी कबर के अंदर वाले हिस्से पे चिपका लें। दिन में कितने हम अपनी अलमारी खोलते हैं, हमारी अलमारियों के अंदर खाने होते हैं ना, ये मेरा खाना, ये बच्चों का, ये मियाँ का, ये उसका, अपनी साइड पे लिख दे के अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे बेहतरीन सोच, हम जायज़ुल ख़ता है, हम गलत करते हैं, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हम गलत करते हैं, कभी कभी बच्चों के साथ सख्त हो जाते हैं, फौरन ही मजा चिल्लाते हैं। मजे की बात है आवाज़ वहाँ बुलंद होती है जहाँ सोच बस्त हो जाती है। चिल्ला के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आवाज की ऊंचाई हजरत लुकमान की वो वसीयतें, वो फिर बात हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम पर आ गई, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हजरत लुकमान की वसीयतें इतनी बेहतरीन थी कि आयमा ने उन वसीयतों को अपनी औलाद के लिए दोहराया है। कहते हैं बदतरीन सो आवाज हैवान की आवाज है, गधे की आवाज है, ढींचू ढींचू करता है, सारे शहर को पता चल जाता है। लेकिन दूसरी चीज बेजा तनकीद से बचे। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है तनकीद करने का। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जुमला किसी SMS की सूरत में पढ़ा था, पता नहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था, उसमें लिखा होता कि एक मुजस्मा किसी ने बनाया और कहा कि लिखेंगे ये कैसा है। लोगों ने बड़े ऐप डाले, बड़े ऐप डाले, कहा उस मुजस्मे को डालकर दूसरा मुजस्मा रखा गया, कहा गया जहाँ ऐप है उस ऐप को बरतरफ कर दें। किसी ने एक छोटा सा टिक भी नहीं किया। तनकीद करना बहुत आसान है। मैं आपसे कहूँ कि आपको तो ये नहीं करना होता, वो नहीं करना, अच्छा आप आए आप यहाँ बैठ कर करके दिखा दें, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाएगी, अच्छे अच्छे बैठ जाएंगे, नहीं वाकई ये काम हम नहीं कर सकते। तनकीद, बेजा तनकीद से बचें, बल्कि जायज तनकीद में खलवत में हो। हम औरतों की पता है एक फेवरेट हॉबी, मदरसे आने के बाद हमने गीबत थोड़ी कंट्रोल कर ली, और जो यूट्यूब पर डॉक्टर साहब के लेक्चर है ना, डॉक्टर आमिर चहरी के आप आते जुबान, उसको सुनने के बाद गीबत छोड़ दी ससुराल वालों की। औरतें भड़ास पता है कैसे निकालती, बच्चों की गीबत करती है, बच्चों की गीबत जायज है। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों, अक्सर माएँ बैठती हैं, पता नहीं भैया हम तो अपनी अम्मी का बड़ा साथ दिया करते थे, घर के काम लपक झपक कर लिए, रोटियाँ पका ली, आटा गूंथ लिया, आजकल की लड़कियाँ हर घर आम शुरू होती हैं। अच्छा फिर बेटों की बुराइयों के खास इकसाम है, दूसरा कॉलम खुलता है, भैया इनकी तो ना पूछो, शादी के काबिल हो गए, ऊँट जैसा कद निकाल लिया, लौटा के लौटा हो गए, कब से दही लेने गया हुआ है, मैं सालन पकाने के लिए बैठी हूँ, तो आप घर में रात को दही को जाम लगा लेती, तो आप इसे दूध की दही बना लेती, लेकिन बैठी अपने बच्चों की बुराइयां करती रहेंगी, शोहर की बुराइयां करती रहेंगी, ससुराल वालों की बुराइयां करती रहेंगी, मासियों की बुराइयां करती रहेंगी, सारी दुनिया खराब है। ये एक बीच में पता नहीं कहाँ से उठ कर आ गई है, जिस तरह से दामाने बनो मैया पर उमर बिन अब्दुल अजीज को मासूमी ने कहा कि दामाने बनो मैया में कीचड़ में कंवल है, हम समझते हम भी कीचड़ में कवन है, सारे इतराब वाले बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं, हम साये बुरे हैं, ससुराल वाले बुरे हैं, बहन भाई बुरे हैं, शोहर ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, हम सनाउल्लाह हाजी जाहिद साहब, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हर वक्त तनकीद। तनकीद तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है, कसरत नुस नो, नसीहतों की कसरत तोहमत तक ले जाती है इंसान। बहुत ज्यादा नसीहतें भी ना करें, कुछ माएँ होती है, मैं अपनी किसी दोस्त से कह रही थी, कहते मैं जब जैसे ही शुरू करती हूँ ना बोलना तो मेरे बच्चे कहते हैं 1 2 3 माइक, और फिर बाद में कहेंगे मी रस्तेपाल साहब ने खाली है ना यहाँ जाके मजलिस पढ़े, सारे मेम्बरियों को हटा दिया जाएगा। यानी हर वक्त लेक्चर देना आपके हाल में, अगर आपके सर पर किसी ऐसे बड़े को मुसल्लत कर दिया जाए जो उठते बैठते आपको लेक्चर सुनाता रहे, आपको अच्छा लगेगा? जब भी इनके पास बैठोगे कहेंगे अव्वले माँ है, चलो अव्वले माँ की नमाज पढ़ो, इससे तो अच्छा तो इनके पास ही ना बैठती। अब आई गई हो तो एक सिपारा ही पढ़ लो। कुछ लोग मैंने देखे खुद मसलन 15 शाबान में खुद ने कुरान खत्म करना, दूसरों को सिपारे बांट रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल अपने घर में बरकत के लिए पढ़वानी, दूसरों को 5-5 टॉफियां दे रहे हैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ो। आप खुद क्या करेगी बीवी, खुद भी अपनी आखिरत के लिए कोई काम कर डाले। लेकिन तनकीद छोड़ दे, आप छोड़ के देखें, जब इंसान तनकीद करना छोड़ देता है ना लोग उससे मोहब्बत करते हैं, जो शख्स भी तनकीद। अच्छा मजे की बात है, जायज़ तनकीद करने के भी तरीके होते हैं। हमने बचपन से वो वाकया सुना वो वुज़ू ठीक करने वाला, लेकिन उस वाकये से कोई असर नहीं दिया। स्पेशली हम जब मदरसे में आते हैं, मैंने देखा है मदारिस में आने वाली खवातीन के बस औकात छोटे छोटे इशूज पर घरों में इतनी कशीदगी हो जाती है। एक साहिबा मुझे कहने की, लाहौर कराची की बात नहीं करें पंजाब की बात करें, कह रही मैंने अपनी बड़ी नन से कहा आपका वजू बात है। अब आप खुद सोचिए इस जुमले ने कितना फसाद फैलाएगा उनके खाने की जिंदगी में, और वो ढेर उम्र भी थी, वो वैसे तो जवान बनी देती थी शौकी पिंक कपड़े पहनकर, लेकिन उन्हें पिछली सारी नमाजें बातिन हैं। तुम अपना मदरसा तुम्हारे सर में पढ़ो और आप आगे सोचे क्या रंग पड़ा होगा उनके घर में। यानी हमें शायद तनकीद करने का सही तरीका नहीं आता, अगर हम तनकीद का सही तरीका जान लेते बहुत सारी कबाहतों से बच जाते। पैगंबर कभी भी डायरेक्ट तनकीद नहीं किया करते थे, पैगंबर किसी शख्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देते थे तो जैसे वो शख्स पास आकर बैठा था ना कहते माँ बालनास लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, यूं करते हैं। अच्छा इंसान के अंदर एक अलार्म होता है, उसे पता होता है उसके अंदर बुरी आदत, और खुदा जिन 3 लोगों को आबाद करना चाहते हैं, 3 सिफात है, मैं 3 नहीं बताऊंगी सिर्फ 1 बताऊंगी। खुदा जब किसी को आबाद करना चाहता है उसे उसके ऐबों से बाखबर कर देता है। हमें पता है ये ऐब हमारे अंदर है, लेकिन जब कोई इस तरह से डायरेक्ट तनकीद करता है तो इंसान चिढ़ जाता है। इनडायरेक्ट तनकीद के अंदर बहुत सारे पहलू बाकी रहते हैं। फिर तीसरी टिप है, खुदा ना करे हमारी जुबान में वो तुरसी हो जो दूध को दही में बदल देती है। यानी मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है सीनियर ग्रुप की क्लास लेना इस वे में कि मुझे यकीन है आप घर को जन्नत बनाने के 14 मुजर्रब नुस्खे पढ़ चुकी हैं। गुड़ नहीं ले जा सकते, गुड़ जैसी बात तो दो। कभी हम किसी की माली मदद नहीं कर सकते, मेरे पास है ही नहीं। कभी हम किसी की दौड़ धूप भी नहीं कर सकते कि जाए और उनके बच्चे का एडमिशन करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। 2 बोल तसल्ली के भी बड़े काम कर जाते हैं। आपको पता है बाज़ लोग बाज़ साहिब हैसियत सिर्फ इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो बहुत हौसले से उनकी सारी बात सुनता है। यानी मैंने अपने घर में बड़ों को देखा है उस मनहूस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाना, भाई उस बेचारे क्या नुस्खा दिखा दी, बात ही नहीं पूरी सुनी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा दे दिया। किस डॉक्टर की तारीफ कर दे हम, ऐसा अच्छा डॉक्टर था, मैं 1.5 घंटा बोलती थी वो 1.5 घंटा सुनता था। मजे की बात आप सुनाने के लिए तो उसको पैसे देने के लिए गई थी। जब जुबान के अंदर तुलसी आती ना तो हमारे सगे भी हमसे अपना दुख सुख शेयर नहीं करना चाहते, जुबान के अंदर मिठास रखे। मजे की बात है बहुत आसान है, यानी अब मुझे नहीं पता इसे टैली किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कतरा सैयद अहमद मुस्तंबित की नफीस किताब, कतरा उर्दू ट्रांसलेशन इसकी कतरा ही के नाम से है। उसके अंदर उन्होंने एक मशहूर वाक्य की तरफ इशारा किया, माशाल्लाह मोमिनात मुझसे बेहतर इल्म रखती हैं, कि जब पैगंबर के पास शहद की मक्खियों की मलका आई और उसने कहा कि हमने आपके लिए शहद तैयार करवाया है तो आप अपने वसी को भेजें, तो पैगंबर ने कहा तुम हर तरह के फूलों पर बैठती हो लेकिन जब शहद तैयार होता है तो शहद मीठा होता है, तो कहा खुदा ने हमें जिक्र सिखाया है, उस जिक्र की बदौलत जब भी हम शहद को तैयार करते हैं तो शहद के अंदर एक मिठास आ जाती है, वो है आप पर और आपके हाथ पर सलावत भेजना। मक्खियों की शहद में मिठास एक सलवात की वजह से आ सकती है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रोज एक तस्बीह इस नियत से निकालें कि मैं भी। अच्छा आप देखिए बाज़ औरतें सिर्फ इसलिए कामयाब हैं जुबान शीरी मुल्क के लिए, वो पूरे घरानों पर हुकूमत करती हैं महज अपनी जुबान की मिठास की वजह से। आपने जुमला औरतों ने जिंदगी में हजार दफा सुना होगा, दिल की बहुत अच्छी है जुबान की कड़वी। मुझे किसी ने किसी का इंट्रोडक्शन इसी तरह से करवाया कि जुबान की बड़ी तरफ है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैंने कहा भैया दिल तक पहुंचे हुए तो 10 साल चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तो जुबान देखते हैं। मुझे क्या किसी के दिल से सरोकार, यानी इतना मेरे पास वाकई फुर्सत नहीं पड़ी कि मैं बैठी रहूं लोगों के दिलों की सर्जरी करती रहूं, दिल का कैसा है वैसा है। हमारा लोग हमारी जुबान, जुबान के अंदर मिठास बहुत बड़ी खुदा की नेमत है, बहुत बड़ी खुदा की नेमत। जुबान के अंदर अल्लाह ना करे हमारी जुबान में वो तुर्सी हो जो दूध को दही में बदल देती है, और अल्लाह ना करे उससे भी बदतर ऐसी तुर्सी हो कि दूध को बिल्कुल फाड़ देती है, किसी भी काबिल नहीं रहता। दही की तो फिर लस्सी बनाई जा सकती है, सर में डाली जा सकती है, कढ़ी पकाई जा सकती है, जो अगर दूध और दही के बीच की चीज हो जाए उसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ मिल्क है। इसके बाद शुक्रिया कहने की आदत डाले। मजे की बात है ये चीजें घर से मैंने बस नॉन मुस्लिम स्कॉलर की किताबों से भी ली, लेकिन बहरहाल हमारे पास इन इश्यूज पर बाकायदा रिवायात का ढेर है। मैं सिर्फ एक रिवायत पढूं, मन लम यशकुर अल मखलूक लम यशकुर अल खालिक। जो खल्क का शुक्रिया अदा नहीं करता ना खालिक का भी शुक्रगुजार नहीं, स्पेशली उस तबके का शुक्रिया अदा करें जिसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। मतलब आपकी मासी आपके पास आकर के अच्छा बाजी में जा रही हूँ तो कहे अच्छा थैंक यू, हम सोचते हैं थैंक यू किस बात का कहे, काम कर दिए हैं पैसे देते हैं थैंक यू किस बात का कहे। यानी आपको सोचे जब हम आंखों से नजर आने वाले इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करते, नजर न आने वाले खुदा का कैसे करने के आदर डाले। ड्राइवर्स मासियां चौकीदार छोटे स्पेशली हम अपने बच्चों का भी शुक्रिया अदा नहीं करते। यानी अगर मैं और आप मदरसे से पहुंचे हमारे दर में यकीनी सी बात है बात साहिब औलाद मोमिनात हैं, परवरदिगार इंशाल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत करे, उसके दीन और ईमान की हिफाजत करे। आप घर पहुंचे आपके बच्चे ने कहा अम्मी पानी ये ले पी लिया। अच्छा पानी पीने से पहले हम कहते हैं सलाम और सलामत बजी स्वभाव कमाते हैं, पानी पीने से लेने से पहले कहे थैंक यू बेटा तुम्हारी मेहरबानी जजाक अल्लाह अल्लाह बेहतरीन अजर दे कितना अच्छा बच्चा है। या आपने आपके वो फासिलाती निज़ाम के अंदर है कि मुस्तहब आमाल में सबसे पहले जिस अमल का सवाब क़यामत के मैदान में दिया जाएगा वो किसी मुसलमान को पानी पिलाना। आप बच्चे का शुक्रिया इन अल्फाज़ में कह सकते हैं तुम्हें इस काम का अजर क़यामत के दिन सबसे पहले दिया जाएगा, आपका बच्चा दोबारा मौका ढूंढेगा आपको पानी पिलाने। और एक गिरोह माओ कहते हैं लेके पानी रख दिया, गर्मी इतनी शदीद थी रास्ते में मेरा पता नहीं कितना वो बह गया पसीने में, मेरा ब्लड प्रेशर लो गया, इतना नहीं गया, दो चमचे टैंक की डाल देते घोल कर ले आते, या गर्म पानी पकड़ा दिया ठंडा पानी नहीं दिया, या ठंडा पानी बहुत ज्यादा दे दिया दांतों को लग रहा है तुम्हें सारी जिंदगी अकल नहीं आएगी, ऐसा पानी मैं पीती हूँ घर में, पता भी हम आगे इधर के दांत अपने नहीं हो उधर के डेंटिस्ट के लगाए हुए हैं, ऐसी सिचुएशन लोगों का शुक्रिया अदा। अच्छा मजे की बात आप देखिए कैसे लोग आपका काम करने के मुश्ताक रहेंगे। जो शख्स बहुत शादी के वसीले दुकानदार के शहर पे मक्खियां भी नहीं बैठती और शुक्रगुजार इंसान हो तो खींचता है दूसरों को अपनी जाने। दूसरी चीज माजरत करने में ताखीर ना करे, जैसे एहसास हो गलत है फौरन सॉरी। और मजे की बात है जितनी जल्दी ये सॉरी असर करता है ना घरों के अंदर जितनी भी तलखियां ना गुब्बारे की हवा निकल गई आपने कान पकड़ दिया, अच्छा सॉरी देखिए ऐसा नहीं करनी प्लीज आपकी मेहरबानी आप मुझे माफ कर दे सामने मेरा हाल। देखिए हमारे घर में रहने वाले हमारे जैसे इंसान बास खवातीन की बातों से लगता है उनके शौहर शौहर नहीं है तो खुदा सा फिर ऑन है, ऐसा नहीं है, हमारे जैसे इंसान है, हम शायद उसे हैंडल नहीं कर पाए, हम शायद अपने घर के बाकी अफराद को अपने साथ चला नहीं पाए, शायद हमारी बहुत ज्यादा नसीहतें करने की वजह से वो कहते हैं अम्मी आज दर्स मदरसे से हुई उनको ये रात तक भेजा खा देंगी दिमाग की दही बना देंगी इतना बोलेंगी 2 घंटे 3 घंटे मदरसे में चुप रहती है अब वो सारे का सारा चुप रहना उनके ऊपर उधार के साथ पटाया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर हमारे मिजाज के अंदर एक लीनियंसी एक नरमी आ जाए उस नरमी का खास है कि हम माजरत करने में ताखीर ना करें, अगर खुसूस अपने से छोटों बड़ों से तो फिर हम कटी उंगली पर पट्टी बांध लेते हैं। अगर घर में पर्स करें मेरे से एक वक्त में खुदा नहासा मेरी सास की नस्बत बदतमीजी होगी तो मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ के कहूँगी अच्छा मम्मी सॉरी, लेकिन जब बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं ना तो सॉरी का तसव्वुर भी नहीं करते। अब हम अपने जनेऊ से सॉरी करेंगे ये कल का बच्चा मैं इससे कहूँ मुझे माफ कर दे, इतनी बातें अच्छा ये सारी की सारी शैतानी सोचे जैसे शैतानी वसवसा आए फिर ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। आगे अब्दुल्लाह मामकानी ने मिरातुर इरशाद में कहा कोई जिक्र जैसा सरीह नहीं है शैतान को भगाने के। आगे बढ़े एक सॉरी बात खत्म कहानी खत्म, दूसरों की माजरत को भी बगैर पसों पेश के कबूल करें। कुछ लोग मेरे के मांस के आटे की तरह ईट जाते आप सॉरी कर रही हैं नहीं भैया रहने दो दिन तो तोड़ दिया, फलाना वक्त तो गवा दिया, इतनी जरबुल अमसान सुनाई, इतने वाक्य, इतने किस्से सुनाए कि आपको जगह मुंह पे टेप लगा दे और कहीं जाओ नहीं करना हमने सॉरी। जैसे ही कोई सॉरी करे, असल हमारे सामने सैयदुल शहदा की सुन्नत है, उन्होंने अपने यजीद रियाज ने सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने उस दिन पता नहीं किस मकतब में पढ़ा कि ढाल को उल्टा कर ले आए। अब ढाल को उल्टा कर ले आए, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज किए होनी, या आपने मुझसे ज्यादा मकासिद की किताबें पढ़ी होंगी, एक जगह पर एक गुलाम से कहा था मेरे हाथों को पीछे बांध लो, एक जुमला नहीं कहा सैयद शौदा ने, माजरत का एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है वो सॉरी कर रहा है, सॉरी नहीं जताया कहीं पर के तुमने ये सारा फसाद बर्बाद किया। हम ऐसे हैं, हमारे हाथ पे कोई मस्जिद में पैर दे देना तो कौन कहते आंखें नहीं, और किसी ने चश्मा लगाया तो कहीं चार आंखें नजर फिर भी नहीं आता, इतना बड़ा हाथ नजर नहीं आया, चल के चल दी, दरगुजर से काम लेते हम, यानी हम कितने हुसैनी बने फिरते, अंदर सैयद शौदा की खुशबू भी नहीं है, और फिर एहतराम और मोहब्बत करें, ये चीजें आपको लौटाई जाएंगी चाहे देरी से क्यों ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ लव, हर चीज की इन्वेस्टमेंट है। आप दूसरों से एहतराम करें, लोग आपका करेंगे, आप लोगों से मोहब्बत करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मोहब्बत दूसरों इंसानों से मोहब्बत करने में एतदाल, और ज्यादा तो रोस्ता ही है ज्यादा, असल रास्ता एतदाल का रास्ता है। कभी कभी इंसान बहुत तेजी से एतदाल के रास्ते को खत्म कर देता है और बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात में फंस जाता है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू आज की खवातीन के लिए बच्चों के हवाले से, मेरा मौजू तरबियत औलाद नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें जिमनन आ जाती हैं। मैं यहाँ पर एक आर्टिकल भी लेकर आई हूँ घाटे के सौदागर, यह आपने सुना होगा, ये जीरो पॉइंट में से लिया हुआ एक छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पर एक शख्स की जिंदगी की तरफ इशारा है, आज की वर्किंग वूमेन, आज का कमाने के लिए अब मुझे बहुत ही नामुनासिब लग रहा है लेकिन क्या करूं, कोलू के बैल की तरह जुटा हुआ मर्द, वो मर्द जो सरे शाम लौट आते थे, महंगाई ने उन्हें मजबूर कर दिया और रात को 9:30-10 बजे आ गए, वो मर्द जो संडे वाले दिन पैर पे पैर रख के सारा दिन टीवी देखते थे, दोस्तों के यहाँ चले जाते थे, शाम को पान खाने निकल गए, इधर उधर चले गए, वो भी अब संडे वाले दिन भी कोई ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिसके असर का संडे भी खप जाए। इस महंगाई की दौड़ में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर हुई वो हमारी घरेलू और निजी जिंदगी थी। यहाँ पर इन्होंने हंडी की सवाने हयात तो खैर बड़े लोगों के लिए था, उसकी जिंदगी के बारे में इशारा किया है। मैं थोड़े से हिंट्स पढ़ूंगी, पूरा कॉलम पूरा फीचर नहीं पढ़ूंगी। कहते हैं कि हंडी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सिएटल से था, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जीक्यूटिव मैनेजर था, उसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए हेलीपैड था, वो परवास के लिए कहाँ चढ़ाया इसने। कहते हैं कि उस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करता था जब तक हंडियों से मुस्कुरा के देख नहीं लेता, और इसने इतनी तरक्की कैसे, इस तरक्की के पीछे हमेशा कुछ चीजें आती हैं, कभी कभी इंसान की सेहत सफर करती है, यानी इंसान मौला का एक कॉल भी है, उस कॉल का मफहूम मेरे अल्फाज में यूं भी है कि इंसान अपनी सारी जवानी लगाकर, अपना सारा यानी सेहत लगाकर पैसे को हासिल करता है और फिर सारा पैसा लगाकर सेहत को हासिल करने के चक्कर में। इसी तरह से हम जिंदगी बहुत सारी बहारें इसी तरह की चीजों की वजह से गवा देते हैं, और गवाते किन की वजह से, अभी आगे मैं आपकी खदमत में अर्ज करूंगी। कहते हैं कि ये हालत हो गई कि वो रोजाना दफ्तर में 16 घंटे काम करता था और इसका एक ही बच्चा था, इसके बाद अपने बच्चे को देने के लिए वक्त नहीं था, जब वो सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और जब वो दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था, छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था और ये सारा दिन क्या करता था जो आजकल के कोशिश और करते, सारा संडे सोने में, और मुझे कंबल ना उठाना तय ना करना, मैंने भी दोबारा सोना है खाना खाने के बाद, अरे आप कितना सोएंगे, तो छुट्टी का दिन होता है किसलिए, या सोने के लिए या हमें लिस्ट पकड़ा देते हैं राशन की चाय लेकर आए चीजें लेकर आए और बेचारे उन चीजों को देने के लिए निकल जाते। कहा कि एक मरतबा टेलीविजन ने अनाउंस किया कि हंड्री का इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दरमियान मेजबान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सिएटल की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत है। हंडी ने उस इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से पर आवर $500 ले रहे हैं, $500 एक घंटे के, और उसके बाद ये इंटरव्यू हंडी का बेटा और उसकी बेगम भी देख रही थी, बेगम ने देखी थी तो कौन देखेगा, कुछ बेचारे मौलाना ऐसे थे जिनकी तभी सब सुनते थे सिवाय उनकी बेगमों के, वो सोचिए घर में भी तुम्हें ही सुने बाहर भी तुम्हें सुने, इससे अच्छा है हम एक ही चीज सुन लें, बहुत हमारे लिए रायज है। लेकिन गा के देख रहे थे, इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके बेटे ने उठकर अपना मनी बॉक्स, अपना जो गुल्लक होता है उसको खोला, उसमें $450 थे। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि हंडी का बेटा इंतजार करता रहा बाप के पलट कर आने का, जैसे ही बाप आया इसने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग दे दिया, बैग लेने के बाद आकर मेरा अंदाजा सोफे पर बैठा होगा, नहीं तो किसी ना किसी चीज में तो टिक गया होगा, कहा कि आपके पास $50 है मुझे उधार देने के लिए। हांजी जी प्यार अपने बेटे देखा सारी दौलत तुम्हारे लिए, $50 की क्या बात है, जैसे $50 निकाल कर रखे, इसने अपने $450 पर वो $50 रख के कहा मैं श्यामल के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले शख्स को $500 दे के एक घंटा खरीदना चाहता हूँ, मैं एक घंटा आपको छूना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे निपटना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। ये सुन के हनरी, अब मुझे नहीं पता वो रोया धोया फूट फूट कर, यहाँ पर तो लिखा फूट फूट कर रो पड़ा। हनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। ये राइटर कह रहे मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, इस मजमून में इसने इंकशाफ किया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज खानदान होता है। मजे की बात है, इस्लाम भी आपको जितनी अहमियत खानदान को दिलवाता है ना किसी चीज को नहीं दिलवाता। ताज्जुब होता है, बाज रिवायतें ऐसी हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं रिवायतों को पढ़ो। बहुत ही मारूफ रिवायत है, मैंने किसी तस्वीरी मुकाबले में बाज जगह पे होता है ना बाज कैंप्स में गर्ल्स के जो कैंप्स लगे हुए होते हैं, तस्वीर को रिवायत को तस्वीर बनाए, तो एक तस्वीर देखी थी, एक तस्वीर में एक मर्द मस्जिद नबी में इत्काफ हुआ है और दूसरा मर्द अपने फैमिली के साथ दस्तरखान पर बैठा है, ये दस्तरखान पर बैठे हुए का अजर उस इत्काफ वाले से ज्यादा है। फैमिली को टाइम देना ये है, फैमिली को टाइम देना ये है। अलबत्ता मैं मेरा मौजू नहीं है, वरना क्वांटिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम के अंदर बहुत फर्क है। कुछ लोग 24 घंटे अपने बच्चों के सर पर मुसल्लत रहते हैं, बच्चे दुआ करते हैं अल्लाह करे कोई मर जाए अम्मी उसके जनाजे में चली जाए, थोड़ी देर तो हमारे सर से टले। यानी ऐसा भी है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमने बाज़ असातिज़ा से पूछा भी कि क्या बहुत मुनासिब है कि माँ हर वक्त बच्चे के सर पर सवार रहे, नहीं ये चीज भी मुनासिब नहीं है, ना इस तरह ना उस तरह, ना ये बेतदाली ना वो बेतदाली, ला तरह जाहिला इल्ला मुफरिता ना मुफरिता, तुम जाहिल को नहीं देखोगे मगर ये कि वो हालत इफरात और तफरीक के अंदर है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज हमारा खानदान होता है, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़ा इत्मीनान हमारे बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। मेरा जाती अंदाजा ये कि आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो ये सबसे घटिया थका हुआ वक्त देते हैं। अच्छा सिर्फ फैमिली को नहीं अल्लाह को भी, ये चूंकि काफिर है जारी बात उसका इस्लाम के साथ मुताबिक है, अपने खुदा को भी थका हुआ वक्त है। जब सारे काम करके थकने मरने वाले करीब हो जाते हैं तो मुजाहिर के बराबर खोल के बैठ जाते हैं, दुआएं मसलन मसरूर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ताजा दम होते तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते ना, सुबह उठ के वो एक लगी बंदी दुआएं है पढ़ ली और मौला के साथ इशारे मोहब्बत कर लिए, हाला बहनी हुआ बहन हो मौत अल्लाह जी जानता हुआ लाई बात है हतम मफिया पकड़ी नहीं मिल कभी, वो दुआएं है पढ़ी वो ताजा दम थे, लेकिन जहन के अंदर सोचती अभी उनको नाश्ता देना, उसने चाय अंडा नहीं खाना, उसको उबला हुआ चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको चाय चाहिए, सारे जहन के अंदर हमेशा हमेशा सिर्फ काम 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 काम। मजे की बात है अल्लाह काम संवारने पर आ जाए तो बहुत तेजी से संवार दे और वो बिगाड़ने पर आ जाए, वो बिगाड़ने पर। और मजे की बात है कराची वाली मोमिनात तो इस बिगड़ने को बहुत तेजी से महसूस कर सकती है, आपने वॉशिंग मशीन के अंदर सर्फ डाल दिया, पानी डाल दिया, बिजली चली गई, बैठी रहे आपने क्या कर लेंगे, उससे ज्यादा बदबख्ती है कि आपने मशीन से डाल भी दिए कपड़े भी डाल दिए, अब बैठे रहे अल्लाह के आसरे, कपड़े इस्त्री करने का ढेर, बिजली पानी गैस किसी भी चीज का इस कराची में भरोसा नहीं ना, कभी यही अल्लाह भी ठान लेते हमारे काम बिगाड़ने और हम बिगड़वाते हैं। मैं आगे आपकी खदमत में अर्ज करती हूँ कि अमीर मोमिनीन ने भी नहजुल बलागा में फॉर्मूला दिया है, यहाँ हनरी की कहानी में कहते हैं कि जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है, हमें महसूस होता है हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं, एक वो गिरोह है जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज है, मिसाल के तौर पे आपके लिए मैं, आपके लिए मैं, ये टेबल, ये ग्लास, ये MP3, ये सेलफोन, ये माइक और इनके पीछे बैठी हुई एक जहरा, या जहरा नहीं बैठी क्योंकि और बैठे, लेकिन इसके बरस मेरे बच्चे जिनके लिए कोई मां नहीं बनेगा, हत्ता बाप भी मां नहीं बनेगा, मेरी बहन अगर इस वक्त वो मेरी मदद की मोहताज है, मेरी तसल्ली की मोहताज है, मेरी हमदर्दी के दो बोलों की मोहताज है, मेरी बहन के लिए कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। आप सबके लिए बिल्कुल एक ऐसी चीज है, मैं नहीं मेरी रिप्लेसमेंट, तुम ना सही कोई और सही। लेकिन वो तबका कहते हैं कि जिनके लिए जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, हकीकतन हमारे मुआशरे में एक मुदर्रसा, एक मुबल्लिगा, एक जाकिरा, ये सब एक पुर्जा है, ये नहीं बैठनी कोई और बैठ जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उनकी मजलिस ही नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम अपने घर के साथ जाती कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाती कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहते हैं कि इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। मेरे मरने के बाद किसे मेरी बरसी याद आई, मौला की एक कौल का मफहूम भी इस तरह से है खुलासतन कि जिंदगी भर उसे दुख मत दो जो तुम्हारे मरने पर सबसे ज्यादा दुखी होने वाला है। हमारे लिए क्राइटेरिया उसको तय कर रहे हैं मेरे मोमिनीन कहा के। फिर यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी है, कहते हैं कि अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर के बारे में एक वाकया मिलता है कि इस अफसर को व्हाइट हाउस से फोन आया कि फलां दिन सदर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इस रिटायर्ड फौजी ने फौरन माजरत कर ली। फोन करने वाले ने वजह पूछी तो इसने कहा मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर जा रहा हूँ। इस जवाब को सुनकर फोन करने वाले ने तुर्श लहजे में कहा आप चिड़ियाघर को सदर पर फौकियत दे रहे हैं। तो उसने कहा कि फोन करने वाले ने जब वजाहत मांगी तो उसने कहा मुझे यकीन है जो ही मैं व्हाइट हाउस से निकलूंगा सदर मेरा नाम मेरी शक्ल तक भूल जाएगा, लेकिन मेरी पोती इस दिन को बहुत अच्छे तक याद रखेगी कि वो दादा के साथ जू गई थी। इसके बाद आगे मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मैं घाटे का सौदा क्यों करूं, अपना ये वक्त अपने बच्चे को क्यों ना, जो मुद्दा तो याद रखेगा अम्मा दूर लेकर गई थी और कुछ अर्सा पहले मैं भी अपनी बच्ची को लेकर हाथी बता के थी शिफा लगा ले मौला जी का हाथी है। मैंने कही मौला जी का हाथी नहीं, वो सिर्फ घोड़ा होता है सुलझना होता है, हर जगह पर मौला जी की चीजें नहीं मिलती, लेकिन हकीकत और मुद्दत तो इंसान याद रखता है, बच्चे उस दिन को याद करके खुशी एहसास करते हैं। कहा कि मैं ये वक्त अपनी पोती को क्यों ना दूं जो मेरे वक्त मेरी शक्ल मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। कहा कि फिर मैंने वाकया पढ़ा, मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद की और सोचा हम क्या कर रहे हैं, घाटे के कितने बड़े सौदागर हैं, हमारे इस वक्त का एक खरीदार परवरदिगार भी था, हमारे इस वक्त का एक खरीदार परवरदिगार भी। देखिए हमारे पास बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, सर वसी इमाम साहब की वो किताब है ना गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, किताब नहीं है बहुत बड़ा खजाना है, इतनी प्यारी रिवायतों की कलेक्शन है। मैं सोचूं मेरे पास एक मता है वो मेरा वक्त है, मेरी जवानी है, मेरी तवानाई है, मेरी ताकत है, मेरी जुबान है, मेरी थिंकिंग्स है, मेरे थॉट्स हैं, मेरा बोलना है, मेरा चालना है। मेरे सामने दो ऑप्शन है, एक खरीदार अल्लाह और एक खरीदार वो शैतान मर्दूद रजीम फलाना ढिमकाना। मैं किसे बेच रही हूँ? हम भी तो कहीं कहीं घाटे का सौदा कर रहे हैं, हम भी तो कहीं कहीं गलत क्रैश पर चल रहे हैं। बस हमें ये तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। अब आ जाइए उस दूसरे फॉर्मूले की तरफ जो नहजुल बलागा में मेरे मोनी ने मेंशन किया है, कलिमात ए किसाल कलिमा नंबर 423 कलिमात। अच्छा मैं आपको बताऊं नहजुल बलागा में एक दो नंबरों के आगे आगा पीछा है, मेरे अपने पास 3 से 4 नहजुल बलागा हैं, सबके अंदर अलग अलग नंबरिंग है, एक लाहौर की प्रिंट हुई है उसके अंदर कभी खुतबा हमाम 192 पे पहुंच जाता है, किसी के अंदर 191 पर है, क्योंकि थर्सडे को हमारा नहजुल बलागा के हवाले से दरस था, वो मोमिनात नहजुल बलागा लेकर आई थी, जैसे मैंने कहा खुद बहुत सारे आगे वालों के इतराज़ से ये खुतबे का नंबर आप सही मेंशन नहीं करें, एक आध आगे पीछे जाएंगे तो आपको ये कलमाए कलमाते के सार में से ये कलमा मिल जाएगा। अमीर मोमिनीन बेसिकली आपको एक फार्मूला सिखाते हैं सुखी रहने का, सुखी रखने का, यानी आगे मैं आपको बताऊंगी खुश रखने की भी आदत डालो, जहां तक हो सके अपने वजूद से किसी को खुशी दे सकते हो जरूर दे, कैसे कि जब मोमिन को लहज में लिटाया जाएगा कुछ नूर उसे हर तरफ से घेर लेंगे, वो एक नूर से सवाल करेगा तुम कौन सा नूर हो, तो आपने सुनी होगी रिवायत बहुत मशहूर सी है, कहेगा मैं तुम्हारी नमाज़ हूँ, खुदा ने तुम्हारी इस तारीखी के लिए एक नूर अरेंज किया है, बात का जुबान पर अल्फाज नहीं आते जो इस वक्त मेरी कैफियत है, फिर उसके रोजे, फिर उसके हज, फिर उसकी जकात, फिर उसका खून, फिर उसका ये, फिर उसका वो, फिर एक नूर को देखेगा जो बहुत ज्यादा मुनव्वर है, वो कहेगा खालो सुनो फिर कल्ब मोमिन, मैं वो नूर हूँ जो तुमने किसी मोमिन को खुश किया। इंसान बात कर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से किसी को खुश कर सकता है। सैयद रश्ती का वाकया सीमाए फरजानगान में भी है, उसके अलावा उलमा की जहाँ पर कहीं वाकया किस्सतुल उलमा टाइप की किताबें भरे पड़े हैं सैयद रश्ती के उस वाकये से, आपने यकीनन सुना होगा सैयद रश्ती, मैंने वो मस्जिद भी देखी है जिन्होंने इस्फहान में बिना करवाई थी, इस्फहान जाकर कहा जाता है जब वो नजफ़ शरफ में थे और ईरान इराक के हालात शुरू से ही ऐसे थे कभी गर्म कभी ठंडे, अच्छा जिनके महीने के 6 महीने के मनी ऑर्डर आते थे, जैसे ईरान इराक के बॉर्डर के हालात खराब होते थे सब कुछ रुक जाता था, हर तरह की कम्युनिकेशन रुक जाती थी। कहा ये जमाना ऐसा आया नजफ़ शरफ में फ़ख्र फाखरे का ये आलम था कि मेरे पास अच्छे से खाने के लिए कुछ नहीं था, कहा हत्ता ये कि मुझे अब महसूस हुआ मेरे लिए कर्ज लेना वाजिब हो जाएगा क्योंकि मैं नमाज की अदायगी के काबिल नहीं रह रहा, मैंने किसी से पैसे उधार लिए और पैसे उधार लेने के बाद मदरसे के बाहर एक कल्ले पाँचे की दुकान थी, वो जो सिरी पाई होते ना, सिर्फ लाहौरी सिरी पाई नहीं खाती, ईरानी और इराकी भी बड़े सिरी पाई खाते, वो तो डेला भी खा जाते हैं, इतने स्टाइल से उन्होंने सर को रखा होता है, वो एक बड़ा सा ट्रे होता है उसके अंदर जुबान लटक रहती है, भेजा होता है और उसके दरम्यान में बकरे का सर होता है। मेरा ख्याल है वो स्माइल भी दे रहा होता है क्योंकि उसके दांत नजर आ रहे होते हैं। आप सोचिए, सोच के गिनाती है ना कैसे खाते थे, खाने वाले उसको खाते हैं उसकी स्मेल से भी पास से गुजरा नहीं जाता। कहा मैं ऐसे उस दुकान पर चले गए, वैसे बहुत रिच होता है, आप देखिए उसी पाए का शोरबा जो ना बहुत हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल का ढेर होता है, चिकनाई का ढेर होता है। कहा मैंने सोचा नहीं सिरीपाई लेता हूँ, जल्दी ताकत आ जाएगी, जल्दी अपने वाजिबात को अदा करने के काबिल हो जाऊंगा। सैदरस्ती कहती है जैसे मैंने उससे सिरीपाई का एक बड़े से बाउल के अंदर, वो भी तोड़ तोड़ के खाते हैं, खास एक पेटेंट स्टाइल होता है खाने का, उसको खाने के भी मैनर्स होते हैं, जैसे आम को खाने के तरीके होते हैं ना। मिर्जा गालिब कहते थे कि काम किसी के सामने करना ही नहीं चाहिए, आम नहीं खाने चाहिए, हाथ मुंह नाक सब तरफ आम 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 लग जाता है। कहा कि मैंने जैसे ही पहली रोटी को डबोने के लिए रोटी पकड़ी तो मेरी नजर एक कुतिया पे पड़ी। अच्छा, कुतिया के लिए भी रिवायत है, इतनी अजीब रिवायत है, खुदा ने कुत्ते से ज्यादा नजीस मखलूक को खल्क नहीं किया, लेकिन हमारी विलायत का मुनकर अंजसु मिन अल कल्ब, जो हमारी विलायत का मुनकर हो जाता है वो कुत्ते से भी ज्यादा नजीस है। अच्छा, वो कुतिया है जिसके साथ उसके वो क्या होते हैं, वो कुत्ते के बच्चे क्या होते हैं, पिल्ले पिल्ले, ठीक है, वो पिल्ले जो है ना वो बेचारे लेटे हुए, लेकिन माँ भूखी इतनी है कि माँ बच्चों को सैराब करने की सलाहियत नहीं रखती। दिल में ख्याल आया कि परवरदिगारा मैं तो हैवान नातिक हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकता हूँ, तो बेजुबान जानवर है। पहली रोटी को उसमें डबोया शोरबे के अंदर, कुतिया के आगे रखा, सोचा एक रोटी कुतिया खा ले, एक रोटी मैं खा ली, कुतिया ने एक रोटी खा ली। सैद रस्ती कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि कुतिया का पेट नहीं भरा। जब इंसान हसास हो जाए ना, उसकी आंखें खुली हो, उसे अपने अतराफ में दूसरे भी नजर आते, फख्र और तकबर में फर्क क्या है? फख्र में इंसान कहता है मैं भी हूँ, तकबर में इंसान कहता है सिर्फ मैं ही हूँ। हकीकतन हम सोचे हम कहाँ खड़े हैं, और डॉक्टर साहब के आईना पड़ने के बाद तो बड़ी जगह में खड़े नजर आता है इंसान अपने आप को। लेकिन बार कहा मैंने देखा कुतिया सैराब नहीं हुई, मैंने दूसरी रोटी को भी ऐसे डबोया और कुतिया के आगे डाल दिया, कुतिया ने सिर्फ आसमान की तरफ एक सर किया। कुतिया है बेजुबान जानवर है, जारी पता उसको कुत्तों की जुबान थोड़ी आती, तो कौन सी जुबान बोल रही है। उसके बाद कहा कि मैंने वो बर्तन पाक किया और वापस आ गया। खैर थोड़े दिन गुजरे, मुझे तार मिला, इस्फान में रहने वाले थे, इस्फान के करीब किसी गांव में रहने वाले थे दृष्टि बेसिकली। कहा मेरे भाइयों का तार था, टेलीग्राम था, कहा फौरन इस्फान पहुंचो, और उस टेलीग्राम में लिखा था कि अब्बा के फला 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 रिश्तेदार जो है वो मरने से पहले बनखड़ तुम्हारे नाम कर गए। और तो इंसान को ताजुब होता है, फिर जारी बात है कागजी कार्रवाई के लिए ऐसे शख्स को पहुंचना पड़ता है। कहते हैं खैर मैं इस्फहान पहुंचा, पता चला कि अब्बा के फलां कजन जो है वो मरने से पहले वन थर्ड मेरे नाम कर दो। अच्छा, वो वन थर्ड तीन गांव बनते थे, उनका जी बड़ी हैसियत वाले थे। पिछले दिनों मैं किसी मोमिना से मिला जिनके खाला सास उनके 600 की चूड़ी उनके मियाँ को दे दी। मैंने कहा पूछने लगी मसला कौन सा है या नहीं है, मैंने कहा ये तो बड़ी अयाशी ऐसी खाला है, अल्लाह ने सबको दे जो ऐसे चूड़ियां सोने की बांटती फिरे। लेकिन कहा वन थर्ड मेरे नाम कर गया। खैर कागजी कार्रवाई हुई, जो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं अपने वालिद के उन कजन के बेटों के पास गया स्पेशली मिलने के लिए कि क्या वजह हुई कि हमारे आपके साथ ऐसे लिंक्स नहीं थे, क्या इतनी ह्यूज अमाउंट आपके बाप मरने से पहले मुझे दे जाए। तो कहा जब मैं उनके साहबजादों से मिला तो उन साहबजादों ने मुझसे कहा कि ऐसी वसीयत थी भी नहीं हमारे बाप। कहा तो फिर आनंद फान इतना इनकलाब कैसे बर्पा हुआ? कहा मगर कुछ दिन पहले, अच्छा जब टाइम को टैली किया, ये एज इट इज वही टाइम था जब वो कुतिया आसमान की तरफ देख रही थी। कहा उस वक्त बाबा ने अपने कानूनी मुशीर को बुलाया और कहा कि वन थर्ड उसके नाम कर दो, और उसके बाद बाबा का इंतकाल हुआ। कहते हैं यहाँ पर सीमा वरदानगान में नकल करते हैं आगर अजय मुख्तारियन, कहते हैं कि आसारे मर्जियत पैदा हुए, आसारे जाओ हशम, फिर उन्होंने इस्फहान में बहुत बड़ी मस्जिद बनाई मस्जिद सैयद के नाम से। तो बस परवरदिगार हमें कुत्ते का पेट भरने के बदले में दुनिया और आखिरत की नेमतें दे सकता है अगर हम किसी इंसान को खुश करते हैं छोटी छोटी सी चीजों से। जरूरी नहीं कि आप किसी को वही बात तीन गांव देंगे ही तो ही कोई खुश होगा। इंसान जब किसी को खुशी देता है ना तो वो खुशी मुसर्री होती है, आप तक भी आती है। जब इंसान दूसरों को, आप कभी सोचे ये मदर टीसा, ये ईदी, ये छीपा, ये फलाने, ये ढिंगाने, ये जितने सोशल वर्क चल रहे हैं आपके शहर कराची में 150 जगह ऐसे हैं जहां दिन रात मुफ्त का खाना बढ़ता है, कौन चलाते हैं सारे सिलसिले? कौन ऐसा है जो पीछे से इनकी फंडिंग होती है ना? कुछ जगह ऐसी है, मुझे नहीं पता, कराची में कुछ जगह ऐसी जहाँ चाय कभी भी नहीं रुकती। आप जाए अल्लाह के नाम पर चाय मिलेगी आपको, खाना मिलेगा, निहारी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। करने वालों को इस नशे का एहसास, इस खुशी का एहसास हो जाता है जब हम किसी को खुश करेंगे, अल्लाह हमारी खुशी के रास्ते खोल देगा। गूगल्स पर जाकर सर्च करें, सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले मुसलमान नहीं काफिर हैं। उन्हें एहसास है पैसा देना राह खुदा में कितनी लज्जत रखता है, खुदा की खातिर काम करना। आप देखिए खुदा के ये सारे बंदे फैले हुए पूरी दुनिया में फैले हुए, ये स्काउट्स, ये लड़के, ये इमाम बारगों के वॉलेंटियर, ये मदरसों को चलाने वाले, इन सबको एहसास हो गया कि सच्ची खुशी और हकीकी खुशी क्या है। وہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کتنا اچھا شعری ذوق ہے آپ کا بھائی, آپ کو علامہ اقبال کے شعر یاد ہیں, یہ سلیبس کا شعر نہیں ہے. لیکن بہرحال بہرحال ہم آگے مینشن کریں گے آپ کی خدمت میں کہ خدمت خلق کرو لیکن ایسی نہیں کہ اپنے آپ کو بھلا ڈالو, یہ بھی کہیں اسلام نے اپریشیٹ نہیں. کچھ خواتین ایسی ہیں اس کے گھر میں شادی ہے, اس کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہیں, اپنے بچے بےچارے باہر سے وہ بن کباب لا کے کھا رہے ہیں, یہ اسلام نے پسند کیا؟ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, تین دن سے اسپتال میں, پیچھے شوہر بےچارا صبح استری کر کر کے بچوں کو یونیفارم پہنا رہا, بڑھ بڑھ کر رہا ہے, کہاں رہے گی تمہاری ماں؟ اسے بھی ہر جگہ پہنچنے کا شوق ہے, مدر ٹریسا بنی پھرتی ہے. ایسے لوگوں کو اسلام نہ ریکمینڈ کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے. لیکن مولا کے اس کلمہ قصر کو بیان کر دوں, ویسے تو آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں جائیے گا اور نہج البلاغہ سے ضرور نکالیے گا, من اصلح بینہ و بین اللہ, اصلح اللہ بینہ و بین الناس, جو اپنے نہیں سوری جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے. میں نے دوسرے کلمہ قصر کی عربی پڑھی, یہاں اردو دوسرے کی لکھی ہوئی ہے. جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. مزے کی بات ہے اندرونی کیفیتیں کہیں نہ کہیں چہرے سے بھی چھلک جاتی ہیں, یہ بھی مولا ہی کا قول کا مفہوم ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے چہرے پر ہمیشہ تیوری سی پڑی رہتی ہے, آنکھوں میں ایک عجیب سی بجلی سی چمکتی ہے, ایسے لوگوں سے لام کرنے کا دل نہیں چاہتا. کم از کم میرا تو ذاتی طور پہ کبھی ایسے لوگوں سے پیار سے ملنا, ایک ان کے اندر ایک تکبر رونق, ایک پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, ایسے لوگ کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتے. ان کے دل کے اندر ایک تکبر کی لہر ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں سے چھلکتی ہے, چاہے کتنے متوازے بنے. ارے زہرا آپ آئیے بیٹھیے, آنکھوں کے اندر ایک ایسا تکبر, نہیں بیٹھنا, جاؤ اپنے گھر میں رہو. یا کچھ لوگ بہت کینہ پرور ہوتے ہیں اور وہ باتوں باتوں میں جتا جاتے ہیں کہ وہ کینہ پرور ہیں, کتنے انوسینٹ بنے, چاہے لاکھ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے نا, ہم بڑے مومن آنکھیں بتاتی ہیں کتنے مومن ہیں, جن دوسروں کے لیے دلوں میں کینہ ہے. نفاق بدترین بیماری ہمارے معاشرے, آپ کے منہ پر لوگ ایسے ہوں گے مر گئے, او خدا اتنی اچھی لگتی ہیں آپ مجھے, نہ پوچھیں. میں تو گھر جا کے بھی آپ کا بڑا ذکر کرتی رہی, گھر جا کے گئی وہ ملی تھی ڈیش فلانی ڈمکانی چار سو بسی نہ لفظ, اور اس کے بعد پھر آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی. کی نا کدورتیں نفاق, کچھ لوگ میں دیکھے اسپیشلی بھومی امی آپ کے بغیر گھر میں رونق نہیں, ایک طرح سے کہتے اچھا بڈی نہیں آئی جان چکے, یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے, اس معاشرے کے اندر لوگ میں نے دیکھا ہے مستحبات کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں. کچھ مدرسوں میں اتنا زیادہ آنے جانے کا سے احساس ہو جاتا ہے, آپ کا سرکل بہت بڑا ہو جاتا ہے. نہیں یہ نماز پہلے بتائیں گے, نماز جہاں تیار کا زیادہ ثواب ہے یا فلاں ناولا کا؟ اچھا اتنی زیادہ مولا ہے اتنی مرید جن سے میں پردہ کرنا شروع کر دوں, پردے پڑنے مانے. ابھی تو آپ مستحبات کے لیے مر رہی ہیں, ابھی تو آپ وہ فیرا کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنے کے چکر میں تھے. یعنی ایک ایسا دین ہے جو آپ سے بعض جگہ پر عمل نہیں کروا سکا. آیت اللہ فضل اللہ قمپانی نے ایک مثال دی ہے مظہر کے بیان, کہتے ہیں تاریخ بشریت میں سب سے طولانی قصیدہ امیر المومنین کی شان میں لکھا گیا, 5000 ابیات پر مشتمل, 5000 شعروں پر مشتمل ہے یہ قصیدہ, لکھنے والا عیسائی ہے. پھر دوسری مثال آگے فضل اللہ قمپانی دیتے ہیں, دوسرا طولانی ترین قصیدہ 3000 ابیات 3000 اشعار پر مشتمل ہے, اسے بھی لکھنے والا عیسائی ہے. کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے جو 5000 شعر تو کہوا رہی ہے, میں اور آپ ایک شعر کہہ سکتے ہیں؟ شاید آپ کے اندر کوئی شاعرانہ مزاج رکھتا ہو تو کہہ دے, کم از کم میں دو دفعہ بھی پیدا ہوتا ہوں تو ایک شعر نہیں کہہ سکتے. شعر کہنے کے لیے ٹیلنٹ چاہیے, شعر کہنے کے لیے محبت چاہیے. وہ بقول سبتے جعفر صاحب کے, عشق جب تک نہ ہو شعر آتا نہیں, مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مرنے کی, میرے مولا میں قربا تیرے عشق کے, سبتے جعفر کو بھی شاعری آ گئی. تو عشق چاہیے نا شعر کہنے کے لیے, یہ کیسا عشق ہے آیت اللہ آغے فضل اللہ قمپانی مظہر کبریا میں کہتے ہیں, جو آپ سے مولا کی اطاعت نہیں کروا سکا. ہمیں اس چیز کو پہلے طے کرنا پڑے گا, لیکن ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک رکھے, اپنے دل کی جھاڑو جھپائی صفائی کرتے رہے. آپ سب گھریلو خواتین ہیں, گھر کے کسی حصے کو آپ چھوڑ دیں, نہ ڈسٹنگ نہ جھاڑو نہ پونچھا, کچھ عرصے بعد اتنا گندا ہو جائے گا کہ صرف ڈلوائے گھر کا گزارا ہی نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے, اتنا کچھ بھرا ہوا دلوں کے اندر, اسٹور روم بنایا ہوا ہم نے. لوگوں کو 25-25 سال پرانی باتیں یاد رہتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے پہلی دفعہ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا نا, تب میں نے ان سے پیسے ادھار مانگے تھے, انہوں نے نہیں دیے تھے. لیکن آپ نے اسپیشلی عورتیں 25 سال پرانی بات, وہ ساتھ نے شروع میں جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ منہ دکھائے کے وہ سارے کے سارے لے لیے, کینے کدورتے چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے ہم نے اس دل کا بیڑا غرق کر دیا. قلب المومن عرش الرحمان, مومن کا دل خدا کا عرش تھا. ہم نے اللہ میاں کو تو وہاں جگہ نہیں دی, شیطان کو اتنی جگہ دے دی کہ وہ شیطان اندر پھیل کے جم کے بیٹھ گئے, اس اونٹ کی طرح جو خیمے کے اندر گھس گیا اونٹ والے کو باہر نکال دی. دل کے معاملات کو سنبھال لو, ختم کر دے. رات کو سونے سے, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, ان کا مفہوم ہے, رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر تاکہ خدا بھی ہمیں معاف کرے. ہم کہتے ہیں میں مرتی مت جاؤں گی, معاف نہیں کروں. اور تو عورتیں ایسے ڈائلگ زیادہ بولتی ہیں معاشرے میں نسبتا. میں نے مردوں کے منہ سے کبھی ایسے جملے نہیں سنے, مرتے مر جاؤں گا اسے معاف نہیں کروں. کہتے ہیں رات گئی بات گئی, ختم کرو معاملے کو. عورتوں کے پاس ایسی بڑی مہارت ہوتی ہیں کسی کو معاف, مزے کی بات ہے. جنت میں جا کے تو دیکھیں, پچھلے دنوں میں نے کسی کے منہ سے سنا اپنی ساس کہیں, وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں. کیوں نہیں جائیں گی, میں نے معاف نہیں کروں. ان کے جنت میں جانے کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی ہم صاحب اختیار ہیں اتنے, ہم اپنے معاملے کو ہینڈل کر لیں, باقی سب قرآن کہتے ہیں اور مناجات ہیں میرے مومنین کے بھی جملے کہ الامان الامان جو عمر جفر رو مرو من اخی ہے وہ امہ ہی واہی ہے وہ صاحبت ہی وہ بنی ہے. پروردگار اس دن امان چاہیے جس دن انسان فرار کرے گا اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, لائف پارٹنر سے, پورے قبیلے کو سم میون جیے, سارے کا سارا کمیونٹی لے لے, رشتہ دار لے لے, مجھے نجات دے لے. ہم اس دن کے لیے اپنے دل کے معاملات کو سنوار لیں. پروردگار کہتے ہیں خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دے. بہت دفعہ بہت سارے لوگ اگر دل کو صاف کر لیں تو چہرے کے اوپر ایک نرم سا تاثر بھی آ جاتا ہے. وہ کسی میک اپ کا محتاج نہیں, وہ کسی فیشل کا, کسی ماسک کا, کسی کریم کا, کسی ایکسرسائز کا. پچھلے دنوں سے کسی نے بتایا ان کو نکالنے کے لیے ایک ایکسرسائز ہے, میں نے کہا معاوضہ ایسے الٹے سیدھے کام سکھانے کے چکر میں ہو. لیکن حقیقتا میرے دل کے اندر اگر شفافیت ہے وہ میرے چہرے سے چھل گئی, اور اگر میرے دل کے اندر کینا کدورتے ہیں, کچرا مچرا بھرا ہوا, تو وہ چہرے سے انداز ہو جائے گا کہ اندر کا کیا حال ہے. دیکھ کر ایک دانا چکھا جاتا ہے, ایسی کیفیت ہوتی ہے. جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے چہرے سے وہ صفائی کا احساس ہو جاتا ہے, برعکس بھی ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ کے فائدے کی, اس کو تو ضرور لکھ دو, اور کچھ لکھے نہ لکھے, جو دین کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے. بہت پیارا جملہ ہے. ویسے تو مولا کے سارے جملے پیارے ہیں, لیکن باہر یہ مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے. جو دین کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے, خدا اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے مدرسے جانے کا, اچھا مزے کی بات ہے پڑھنے والا بیچارہ تو شاید زیادہ ہی مجبور ہوتا ہے, سننے کے اعتبار سے کوئی اوپن کلاس ہو جہاں اٹینڈنس نہیں ہے. جیسے ہی آپ کلاس میں جانے کی باری آتی ہے نا, مثلا ہمارے ایریا میں بڑی کلاس ہوتی ہے, کفن کٹنگ کلاس, ڈیموسٹریشن کلاس, غسل کلاس, قیت کلاس, کلاسیں. جیسے ہی ارادہ کرتے ہیں نا, پہلے تھوڑی جمائیاں آنے لگتی ہیں, سوچتے ہیں چلو آج تو سننی ہے نا, پڑھنی نہیں ہے, لیٹ جاتے ہیں. کب سے نیند دوپہر کی نہیں کی, لوگ تو دوپہر میں سو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, پڑھ جاتے ہیں پیچھے چل پڑتے ہیں غسل خانے یہ کرنے. شیطان ایسے ایسا پیار سے آ کے بیٹھ جاتا ہے, لوگ دن شروع کرتا ہے, ہم بھی موزے آسین اتار کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, چلو چھوڑو. اچھا کبھی کبھی شیطان ہمیں اس طرح سے نہیں برگلاتا, شیطان ہمیں حدیثیں یاد کراتا ہے. گھر کے کام کرنے کا بہت ثواب ہے, گرد و غبار اتارنے کا بہت ثواب ہے, جھاڑ چپائی کا بہت ثواب ہے, عورت کا سارا ثواب اسی میں, وہ گھر کی چار دیواری میں رہے یہ کہتا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ چھوڑو آج رہنے دو, یہ باتیں تو پیچھے ان کے چینل پر بھی آ جائیں گی, بعد میں کیسٹ سن لیں گے, نیٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, آج یہ کام کرتے ہیں. مزے کی بات ہے دونوں کام کرتے ہیں. استاد رجب علی حیات نے مثال دی, کہتے ہیں شیطان کا کام کبھی کبھی آپ کو ایک نیکی سے نکال کے دوسری نیکی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. اور بہت ہی پیاری مثال استاد رجب علی حیات نے اپنے ایک انٹرویو میں دیے, کہا کہ مثال کے طور پہ آپ زیارت عاشورہ کھول کے بیٹھے, ایک مستحب سمجھ کے, امام کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن سمجھ کے, امام کے ساتھ ایک اظہار الفت سمجھ کے, جیسے ہی آپ نے مفاتی الجنان میں وظائف اس میں دعاؤں کی کسی کتاب میں زیارت عاشورہ کھولی, شیطان آپ کے ذہن میں آئے گا زیارت عاشورہ تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, فلاں کوفی بہت بیمار ہیں, صلہ رحم ہو جائے. اچھا تھوڑی دیر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم مفاتی کے اندر یونگلی رکھی, دعاؤں کی کتاب کے اندر یونگلی رکھی اور سوچ میں پڑ گئے, ہاں صحیح ہے کب سے نہیں گئی, کال ہی کر لے بندہ حال چال ہی پوچھ لے. پھر جو سیٹرڈے سنڈے کے پیکیجز ہوتے ہیں مختلف قسم کے, جن میں لمبی لمبی کالیں فری ہوتی ہیں, کام کو لگائے رکھو, مکنے کے اندر اٹکائے رکھو, باتیں کرتے رہو, حتیٰ سیل فون ختم ہو جائے یا بیلنس ختم ہو جائے. اب ہم نے یہاں پر رکھی اور ہم نے سوچا کہ نہیں پہلے وہ ضروری ہے, یہ تو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لوں گی. اللہ کا شکر ہے زیارت عاشورہ تو چھٹتی نہیں ہے, بس عادت ہو گئی ہے, اڑکی سوتے ہیں, سوتے میں بھی پڑھتے رہتے ہیں السلام علیکم یا عبداللہ کرتے رہتے ہیں. مزے کی بات ہے استاد رجب علی حیات کہتے ہیں نہ شیطان وہ کرنے دے گا یا نہ یہ کرنے دے گا, بیچ میں سے کر کے نکال کے لے جائے, اور نکال کر لے جاتا ہے, یعنی ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف, اور دوسری نیکی سے تیسری نیکی کی طرف. مزے کی بات ہے کوئی بھی نہیں کر لے جاتا, اور کبھی کبھی کر لیں تو پھر بیچ میں آ جاتا ہے, پھر وہ ایسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, دیکھو سب سو رہے ہیں ہم ہی نیک ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں پر, زیارت عاشورہ لے کر یا کوئی بھی مستحب عمل لے کر. نہیں, ہم دین کے لیے سرگرم ہو جائیں. کچھ لوگوں کے پاس بڑے ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں مدرسے جانے والی خواتین یہ, مدرسے جانے والی خواتین وہ. مجھے بہت دیر پہلے اپنے قابل احترام بہن کی ذاکرہ ہے بڑی معروف آزاد کشمیر میں, بہت اچھی بات لگی, کہا کہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ مدرسے جانے کی وجہ سے یوں ہے تو ان کو جو مدرسے نہیں جاتے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلمس ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دین کی خاطر واقع للہ کریں, خدا کی خاطر کریں, مجھے معاشرے میں نام نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, مجھے آپ سے عزت نہیں چاہیے, مجھے احترام نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ لگن ہو کہ میں اپنے دین کی کہیں سے خدمت. اسپیشلی امیر المومنین کا ایک جملہ ہے صحیفہ کاملہ میں, اور اسی طرح کے ملتے جلتے جملے امام سجاد کے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, اللہم جلنی ممن تنتصر بین لدینک ولا تستبدل بغیر, خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں, میرے علاوہ کسی اور سے یہ کام نہیں, میں نہیں کروں گی کوئی اور کر دے گا, میں کیوں نہ کروں یہ کام. جب میں نے خدا کے خاطر یہ کام کیا نا, یقین کریں میں بعض ذاکرہ دوستوں سے بھی کہتی ہوں جو واقع اللہ کام کرتے نا, سارا سال بچے بیمار اوپر نیچے چلتے رہیں گے, محرم سفر میں بیمار نہیں پڑتے. کیوں؟ ہر وقت مشکلات رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ 19-20 رہتا ہے, لیکن جب واقع ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرنا ہے یہ کام دین کا اور خدا کی خاطر کرنا ہے, خدا راستوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے. خدا کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, قرآن کی آیت ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے. اچھا اس کے لیے راستے کھولنا مشکل کام ہے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی کام مشکل کام نہیں ہے. وہ سنوارنے پر آئے تو ساری بگڑی ہوئی سنوار, اور وہ بگاڑنے پر آئے. کبھی کبھی اتنی غیب سے مدد ہوتی ہے, میں نے بعض دوستوں سے بھی سنا ہے, بعض اہل حال سے سنا ہے. آپ واقعی کہیں پر پکارے پروردگار کو, پروردگار ایسے راستے فراہم کرتا ہے, بعض میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے عبرت بن جاتی ہیں مجھے, اور ہم ان عبرتوں سے نہیں سیکھتے. کہ سید الشہدا آگئے مرندی, نام بہت کم سنا ہوگا آپ نے, بہت فیمس قسم کے آیت اللہ نہیں ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے رستگاران, اس کے اندر انہوں نے نقل کہا جتنا ہو سکے اپنے پیر کو سید الشہدا کی کشتی سے باہر نکلنے نہ دو اپنے پیروں میں, چائے دینے کے ذریعے. صاحب ایران عراق میں شاید دیکھو مسلسل چائے پیتے رہتے ہو مجلس والے, تو مولوی صاحب تو بےچارے یہاں پانی نہیں پیتے, وہاں لوگ سننے والے چائے پی پی کے الگ ہوتے رہتے. کہا چائے دینے کے ذریعے سے مومنات نے جوتے اتارے, ان جوتوں کو جفت کرنا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھے بہت احترام سے کرتے ہیں, یہ سوچے کہ سید الشہدا کے زیادہ ہوں گے. جتنی ویلیو آپ دے دیں, ہمارے استاد ہیں بزرگوار, ایک زمانے میں شاید قائم میں بھی دو لیکچرز کے گئے تھے آگئے نادر صادق, انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے چیز کو نقل کیا, کہنے لگے کہ ایک خلاصہ ہے میرے الفاظ میں, اور میں نے اس کا انہیں کے منہ سے سنا, کہنے لگے ایک مرتبہ ایک دو لڑکے تھے نوجوان سے, ہوتے نا کچھ لوگ چچر ٹائپ کے تنگ کرنے والے, کہا ایک مولانا صاحب کسی جگہ پہ مرکزی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے, یہ دونوں لڑکے مسلسل چک 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 کرتے رہتے تھے پوری مجلس میں, مولوی صاحب جچ ہو گئے دونوں لڑکوں کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس بھی کرنا ہوتا ہے اور آ کے بھی ممبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, مولوی صاحب کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے اور شرارتیں کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں, کہے مولوی صاحب ان دونوں لڑکوں سے جچ ہو گئے. میں سوچا میں نے اس طرح کے لوگوں میں مجلس نہیں پڑھنی. کہا تھا عاشورہ کا دن تھا, اچھا ان کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے یا غصہ ہے یا جو بھی ہے, جو بھی اب آپ اپنے الفاظ میں کہہ, کہ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہی امام بارگاہ ہے اور عاشورہ اور تاسوہ کے بیچ کی رات ہے, 9 اور 10 کے درمیانی رات ہے, اور یہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہدا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رجسٹرڈ ہے, مولا کہتے ہیں عباس میرے عزاداروں کے نام لکھو, وہ 1 2 3 4 سب کے نام لکھتے ہیں, یہ دو نوجوان لڑکوں کی باری آ جاتی, نام سن کہتے لکھو. ابو الفضل عباس بہت ادب سے کہتے کہ مولا ان کے نام لکھو, مولوی صاحب کو بھی جج کر دیا, عاجز کر کے رکھ دیا. امام حسین کہتے تم دیکھتے ہو عباس کس نے مولانا کو وزٹ کر دیا, باقی لوگ بھی ریٹیک تو ہوتے نا, کوئی ایسا مجلس میں ایک بیٹھا ہوا, ہم تو اتنے نواب زادے ہیں کہ بچہ کسی کا روتا تو ہم بیزار ہو جاتے, اگر بچے مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو کہاں جا کر سیکھیں گے. تب بچے میں نے دیکھا ہے کچھ سینسٹیو لوگ, کچھ کراچی کی بڑی ماں بار گئے, بچے والی ماں کو ہال میں نہیں جانے دیتے. کیوں؟ بچہ ارے تھوڑا سا اطراف والوں کو بھی تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے, گھر میں تو ہمیں بچوں کی ریلی میں ڈرامہ سارا سمجھنے آ جاتا ہے, یہاں میں ہم ایسے معصوم بنے ہوئے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو ہمارے سارے دماغ میں خلل پڑ جائے گا. نعوذ باللہ. نے کہا کہ یہ تم دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کو اریٹیٹ کیا اس کو اریٹیٹ کیا, جب تاسوا کی رات تھی سارے عزادار عزا خانے سے نکل گئے ماتم کے لیے, جو بھی وہ سلسلے ہوتے ہیں زنجیر زنی سینا زنی جو بھی اس رات کے پروسیجرز ہوتے ہیں, کہا یہ دونوں بھی نکلنے لگے. اچھا ان دونوں کا قصد نہ ماتم ماتم نہیں کرنا, ایسے عزاداروں کے درمیان گھومنا پھرنا. کہا جب وہ سارے کہوے کے استکان اس امام بارگاہ کے خادم نے اٹھا لیے تھے, دو قندان شوگر کیوبس کے جو پاٹس ہوتے ہیں, شوگر پاٹ ہی کہہ لیں, کہا ایک نے دوسرے سے کہا یہ شوگر پاٹ اٹھا لیں. کہا کیوں؟ का ऐसा ना हो थके हुए ज्यादा आ रहा है तो किसी को थकन में एहसास ना हो उसका पाँव टकरा जाए। कहा मैंने उनका वो शुगर पॉड्स को उठाना देखा, इतनी इनायत है सही दुश्मन यार, आप तो शायद महसूस भी नहीं कर सकते, जानते भी नहीं। शेख रजब ने फयात ही ने इशारा किया है किसी आयतुल्ला की तरफ, कहा कि उन्होंने इमाम हुसैन से तकाजा किया था, बोला मैं बुढ़ापे में आपके दस्तरखान पर बैठा। इंसान किसी इदारे में काम करते तो रिटायर होता है, ग्रेजुएटी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलता है, पेंशन मिलते हैं, मैं ज्यादा बुढ़ापे में आपके दस्तरखान पर बैठा। उन्हें एक चाय का वाफ कहीं से मिला गिलान में, उन्होंने उस चाय के वाफ को डील कर ली बेचने के लिए। किसी आयतुल्ला यसरबी के पास गए तो उन्होंने कहा बादशाहों के हदियों को बेचा नहीं करता, उस जमाने में शाह का जमाना था ईरान में। उसने कहा मुझे शाह ईरान से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने कब शाह ईरान की बात की, मैंने बादशाहों के बादशाह की बात। कहा जब तुमने जरी से कहा था ना मौला मुझे आपके दस्तरखान पर बैठना, उस वक्त मौला ने तुम्हें चाय का भाव पहुंचा दिया, तुम्हारे बुढ़ापे का असर तो बच्चों के आगे हाथ ना मिलाना, और आज तुम उसे बेचने की बात करते हो। इंसान सोचे ऐसे ये तो सौदा के दरवाजे से हमेशा हमेशा किसी भी एतबार से वाबस्ता, और वो वाबस्तगी बहुत बड़ी है। मेरा मौजू नहीं है, बहुत मैं इधर उधर चली जाती हूँ, लेकिन बहरहाल वाकई जब हम सैयद सौदा के खातिर कोई काम करते हैं, आप सोचे दुनिया में मैं आपका उधार नहीं रखूँ, आप मेरा उधार रखें। जब हम दुनिया में किसी का उधार नहीं रखते ना इमाम हुसैन भी किसी का उधार नहीं, ना हुसैन की माँ उधार रखें। ईरान इराक के तहमीली जंग में जिस स्कूल में एक बच्चा था इकलौता अपने माँ बाप का, जब वो बेटा मर गया तो वो माँ बेचारी रोज आती थी उसकी कब्र पे रोती थी। एक दफा मुहर्रम का आगाज हो गया था, बेटे की कब्र पे आके कहा मैं रोज आती हूँ तो मेरा इंतजार करती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन नहीं आऊंगी, मैं जिस होने जाऊँगा हुसैन पे रोना। इस जुमले के कब्रिस्तान से निकल बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जाके इंसान एक सिनो साल बच्चा बच्चे की तरह हो जाता है, बुढ़ा बच्चा एक बराबर। छह या सात मुहर्रम की थी बेकरार, इतनी भी पूरे शहर में कोई नहीं था इसके बेटे की कब्र के अलावा, बेटे की कब्र पर गए। जैसे ही कब्रिस्तान में शाम के वक्त दाखिल हुई कब्रिस्तान में सन्नाटा था, एक नजर पड़ी एक औरत इसके बेटे की कब्र पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। आगे बढ़ी और देखा कि खातून है मुहज्जबा है, कहा कि बीबी आपको गलत फहमी हुई है, इस बेटे का मेरे अलावा कोई नहीं, आप यहाँ नहीं किसी और की कब्र पड़ जाए। तो उसने कहा तुम मेरे बेटे के अजाखाने में चली गई, मैंने सोचा मैं तुम्हारे बेटे की कब्र पड़ा, सोचा मैंने और आपने इमाम हुसैन की माँ कहाँ तक जाती हमारा साथ है, हम हुसैनी बनकर काम करें, हमारा काम आगे की काम वो हमारे अल्लाह संवारेगा, हम खालिसतन लिल्लाह होकर काम करें ना यकीन करें वो परवरदिगार कभी भी किसी का उधार ना परवरदिगार रखते हैं ना अहले बैत रखते हैं। जो दीन के लिए सरगर्म हो जाता है खुदा इसकी दुनिया के कामों को पूरा कर देता है। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी चीज कि जो अपने और अल्लाह के मामलों को सवार देता है, अल्लाह इसके और लोगों के मामलों को सवार देता है। कुरान की एक आयत भी है, उस आयत का एड्रेस मैंने सोचा था मौजम मुफाहरस में देखो लेकिन मसरूफियत की वजह से देख नहीं पाई। कुरान कहते सजद अल्लाह रहमान लहू गुद्दा, जिंदगी में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपसे पूछे कोई आपको राशन देते हैं नहीं, तोहफे तहफे देते हैं नहीं, अच्छे लगते हैं बस लगते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ देते हैं फिर भी अच्छे नहीं लगते। सजद अल्लाह रहमान लहू गुद्दा, अल्लाह का इख्तियार है इज्जत देना, अल्लाह का इख्तियार है जन्नत देना, अल्लाह का इख्तियार है लोगों के दिलों में मोहब्बत करा देना, और अल्लाह का इख्तियार है उस मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल देना। तुम अपने और अल्लाह के मामलों को, मैं आपको एक बार तो हम औरतें कहाँ पर मार खाती हैं, नन क्या शादी हो सारा जमा पूंजी में, ये खुलासा भलाई नहीं कर रही, मेरी भी नंदे सुने कि मेरे दर्दों को तो पकड़ के क्या कहेगी मुझे, लेकिन घर की कोई शादी है हम थोड़े से भी काम चला सकते हैं, हम कहते हैं वो क्या कहेगी, कितना मरते हैं वो क्या कहेंगी, वो क्या मतलब की बात है, लोगों ने बातें करनी, लोगों ने बातें करनी। शादी की हिकायत आपने बचपन से सुनी होगी, तो गधे को पानी में डालो, हम अपनी सारी पसंदाज इधर उधर सब कुछ दाव पर लगा लेते हैं तो भी चार बातें सुन लेते हैं, फिर रोते रहते हैं घर आकर, वो भी रोते मियां को भी सुनाते रहते, देखा आपके घर वाले तो ऐसे है वैसे। जब हमारी खुदा के साथ अपने मामला को संभालने की बारी आती है तो हम कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं, मैं किसी मोमिना से कहूँ आपके गर्दन पर 35,000 रुपए के रोजों के कफारे हैं तो दो चमाट लगाई कहेंगे चुप करो कैसी बातें करती हो, लेकिन हम बस औकात इतना पैसा घर की किसी शादी में खर्च करते हैं और कहते हैं 35,000 रुपए कोई रकम है, खर्च होने पर आए तो कुछ भी नहीं और संभाल के रखने में आए तो बहुत बड़ी रकम है, जमा करने में मुद्दत लग जाएगी। हाँ अपने वाजिबात की अदायगी के लिए बहुत दफ़ा ताज़ा दम नहीं होते, میں نے قضا نمازیں پڑھنی ہے, آئیے خدایا ابھی جا کے لیٹوں کمر سیدھی کروں, یہ کروں وہ کروں, پڑھ لوں گی, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بولنے والا ہے. جیسے کوئی آتا ہے سمجھانے سے ایسے پیروں میں پہیے لگ جاتے ہیں, لپک جھپک ٹیبل پر سے چیزیں کھائی, سموسے بھی تل لیے, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. ہمارے استاد ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, آگے مجھ سے نکلا تھا تفصیل لو دیکھی ہوگی آپ نے, کہا کرتے تھے انسان سمجھتا ہے وہ ایک کلو میٹر چل سکتا, اس کے پیچھے کتے لگ جائیں 10 کلو میٹر تک جاتا. میں نے کہا کبھی کبھی مہمان بھی ایمرجنسی میں آ جائیں تو ایسے ہی لپک جھپک کے سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم سگنل پہ کھڑے ہیں, آپ کا گھر کہاں ہے, سیدھی طرف یا الٹی طرف؟ ان کے آنے سے پہلے ڈرائنگ روم باویلا تھا, او خدایا, او گھر میں ماشاء اللہ بلیک آؤٹ, سب کچھ سب سمٹ سمٹا گیا. ان کے لیے چائے بھی بن گئی. ابھی شوہر کہہ رہا تھا ایک چائے کا کپ لاؤں, تو کہیں ہمیشہ بس آپ کو چائے چاہیے, دن میں 10 دفعہ چائے پیتے ہیں, چین نہیں ہے. مہمانوں کے لیے چائے کے ساتھ نمک پارے بھی ہوں گے, سموسے بھی ہوں گے, وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. ہم دنیا کے لیے کتنا مرتے ہیں, آخرت کی جہاں باری آتی ہے ہم سوچیں کل کریں گے. کل سے وعدہ رہا اپنا, خدا نماز اپنی کل سے شروع کر دوں گی, بس اپنے ہی گوڈی لے کرنا, کل روزہ بھی رکھوں گی, کل سب کچھ کر لوں گی. یہ آج کیوں نہیں آتا ہماری زندگی میں؟ میں اپنے اور اللہ کے معاملات کو سنواروں, اللہ میرے اور لوگوں کے معاملات کو سنوار دے گا. ہم کتنا ذہن پر سوار رکھتے ہیں دنیا کے معاملات کو, وہی نا ہم تو ایسے ہیں, چھنو خالہ کی بیٹی کی فکر ہے اور بچوں کی بچے کی فکر ہے, نہیں فکر تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا فارمولا, آپ اللہ کی اطاعت کریں, خدا لوگوں کو آپ کا مطیع بنا دے گا. اسی دستگاران نامی کتاب میں ایک عالم ربانی کی طرف مرتضیٰ زاہد آغا علی قاضی کے بھی استاد تھے, ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے اس کے والیوم نمبر 1 میں, کہا جاتا ہے ان کے گھر میں لیڈیز کی مجلس ہو رہی تھی, لیڈیز اور جینٹس کی مجلس, خواتین سینے خانہ میں بیٹھی تھی اور مرد حضرات, اب مجھے نہیں پتا کیسا سیٹ اپ تھا, کتاب میں لکھا ہے مرد اندرونی حصے میں تھے جہاں چھت تھی اور خواتین سینے خانہ میں بیٹھی ہوئی مجلس سن رہی تھی. جیسے عورتیں مجلس کے لیے بیٹھی تھیں, مڈ تھا یا مجلس شروع ہوئی تھی, بارش برسنا شروع ہوئی, کہتے ہیں مرتضیٰ زاہد باہر آئے, انہوں نے آسمان کو دیکھا, کہتے مگر نہیں بھی نہ بات دیکھتے نہیں ہو, برسنا بند کر دو. آسمان سے کہا دیکھتے نہیں ہو, برسنا بند کر دو. اچھا یہ جو دو لڑکے سے تھے ابھی, جس کو کہنا ان کا مرید ہے لیکن ابھی بلی انیشل اسٹیجز پر ہے, یہ گھر سے باہر گئے, دیکھا گھر کے باہر پوری گلی میں بارش ہو رہی, اس گھر کے اوپر بارش کا خطرہ نہیں گر رہا. آپ قرآن کی وہ آیتیں جمع کریں, قرآن سی ڈی کے ذریعے, موجم المخارس کے ذریعے, خلق لکم سخر لکم, یہ دو مادے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا, ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر لیا, تمہارے اختیار میں دے دیا کائنات کو, یہ ساری آیتیں انسان پڑھا کر ختم ہوتی. استاد محسن نے کراتی نہیں مکتب رسول میں مثال دی توحید کے چیپٹر میں, کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ انسان پر آ کر ختم ہوتی ہے, ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا, ہم نے تمہارے لیے انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا. انسان کا ہدف ہے خلقت کیا تھا؟ پہلا عبادت. عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا کرنا ہے؟ فلاح پا جاؤ. یعنی انسان کے اندر ایک بیسیکلی پروردگار, اور حدیث قدسی بھی ہے, فرزند آدم تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا, اے فرزند آدم میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. اور فائدہ ارادہ شیئن نہ یقول لہ کن فیکون, اور جو اللہ کی ایک صفت یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن ہو جا, بس وہ ہو جاتی. خدا مومن کیسا کر دیتا ہے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں بھری پڑی ہے, یا آپ قصص العلماء ٹائپ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, تاریخ ہے بشریت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی کہ جنہوں نے واقعا خدا کی خاطر کام کیا. خدا نے ان کو اتنے اختیارات, محدث جلیل القدر صاحب مفاتی, محدث عباس قمی, اچھا مزے کی بات ہے محدث عباس قمی کا اصل کارنامہ مفاتی نہیں تھا, ان کا اصل کارنامہ سفینۃ البحار تھا, جس کے لیے آپ کوئی مرحوم علی اللہ مقامہ سے زندگی کے آخری ایام میں کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ باسی حکومت والے آپ کو آپ کی لائبریری سے نکال دیں اور آپ کو صرف ایک کتاب اٹھانے کی اجازت ہے تو آپ کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ اچھا انہوں نے قرآن نہیں کہا, قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا, پوری دنیا ان دا ہول ورلڈ. کہا اگر مجھے ساری لائبریری سے بے دخل کیا جائے میں سفینۃ البحار کو اٹھاؤں گا. بحار الانوار 110 والیمز کمپائلڈ بائی علامہ مجلسی آل اللہ مقام. سفینۃ البحار 20 سال کے لگ بھگ لگائے ہیں محدث جلیل القدر نے اس بحار کی چھانٹی کر لی, کیونکہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایتوں کو صرف جمع کیا ہے, جسٹ کلیکشن ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا یہ اتھینٹک ہے یہ نان اتھینٹک ہے, یہ حسن ہے یہ فلاں ہے یہ دھمکانی, وہ حدیثوں کی اتنی اقسام ہے سوچ کے نیند آنے لگ جاتی ہے اگر انسان کو اقسام دہرانی پڑے. 20 سال لگائے ہیں محدث جلیل القدر عباس قمی, کہتے ہیں میں نے 20 سال میں سفینۃ البحار کو کمپائل کیا, और जिमनन इंसान होता है ना, बड़ा काम करता है, आपने पतीले के ऊपर पाए और निहारी चढ़ाई है, जिमनन आपने को छोटा सा हलवा भी बना लिया, काम उस जिमनन किया जाने वाला काम मुफाती था। कितनी आज आप किसी भी जगह पर, आप ईरान, इराक, शाम, कहीं पर भी चले जाए, आपको कुरान के साथ मुफाती मिलेगी। मुफाती को खुदा ने वो इज्जत, वो एहतराम, अच्छा दुआओं की किताबें हमारे पास कम भी नहीं थी, मिसबाह उल मुतहज्जिद थी, सैयद इब्ने ताऊस अलैहि रहमा की अखबार थी, लेकिन जो वैल्यू मुफाती को मिली है वो किसी किताब को नहीं मिली। उलमा कहते हैं यहाँ पर मुहद्दिस जलील कद्र का इखलास बहुत था कि जब उन्होंने मनाजिर उल आखरा नामी किताब लिखी, और आपने वो वाक़या सुना होगा कि हरम हज़रत मासूमा में इनके वालिद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो वहाँ एक नौजवान लड़का जो है वो मसला गो मसले पढ़ते हैं, एक दो मसले पढ़ते हैं हर नमाज से पहले ज़ोहर असर की, तो वहाँ पर वो मनाजिर उल आखरा में से इक्तबासात पढ़ता था, छोटे छोटे टुकड़े पढ़ता था। मुहद्दिस के वालिद हर रोज घर पर आकर मुहद्दिस से कहा करते थे, तुमने इतने साल लगाए, काश तुम कुछ बन जाते, वो एक लड़का है हरम में पढ़ता है और पढ़ के दिल खुश हो जाता है, क्या प्यारी बातें करता है। मुहद्दिस कहते हैं मेरे दिल में बहुत दफा आया कि बाप से कहूँ जिस किताब से पढ़ा है वो किताब मेरी है, पर ख्याल आया किताब किसके लिए लिखी है, अब्बा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अब्बा के लिए, पहले तय करूँ नहीं अल्लाह के लिए लिखे, बात खत्म। कहते मुहद्दिस को खुदा ने इतना मकाम दिया था, उनकी मुफाती, उनकी सकीनातुल बिहार, इन मुहद्दिस के लिए लिखा जाता है, इनकी छः साल की बच्ची का हाथ टूट गया, लेकर गए अब्बा है जारी बात है लेकर जाएंगे, चाहे बच्चे का हाथ टूटा हो तो उसकी तकलीफ वाकई में देखी नहीं जाती, हड्डी टूटने की दर्द बड़ों से भी बर्दाश्त नहीं होती, बच्चा तो फिर बच्चा है, शायद बेहोश ही हो जाए इंसान। अब वो डॉक्टर, वो तबीब साहब ने मुआयना किया, उसके बाद अंदर चले गए अपने जो क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जिसके अंदर वो हकीम बैठते हैं, वो क्लिनिक थोड़ी होता है, देसी क्लिनिक कहने आप मतलब, हाँ ये तो अरबी गलत हो गया, उर्दू में क्या कहते हैं, मतलब ही कहते हैं, उर्दू भी हमारी ऐसी नहीं, अच्छा चले भाई जो भी कहते हैं, क्लिनिक के अंदर चले गए मरहम बनाने के लिए। कहा कि बच्ची इतनी बेखरारी से रो रही थी मुहद्दिस की, कि मुहद्दिस से देखा नहीं गया, वो लाडली बच्ची थी, पानी का ग्लास पड़ा हुआ था यहाँ पर। मुहद्दिस ने कहा इन उंगलियों ने बहुत कालन बाखर और कालन सादिक लिखा, उंगलियां डबो दी, और उंगलियां डबोने के बाद पानी बच्ची को पिला दिया, बच्ची ठीक हो गई। यानी मोमिन ये है, मोमिन की सिफत ये है, मोमिन आप अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह सबसे आपकी इताअत करवा लेगा। और यहाँ पर एक जुमला मैंने शायद करके गुनाह के 40 तरीके से ही दिया है, एक अहले दिल का बयान है, जब मैंने खुदा की इताअत में कोताही की, मेरे अतराफ वालों ने, हत्ता मेरे जानवरों ने मेरी सरपेशी शुरू की। आप अल्लाह के हर के खादिम से और मखदूम से, जब आप अल्लाह की खिदमत करते हैं, अल्लाह ने सबको आपके खिदमत पर लगा दिया। हमारा आज का सबसे बड़ा रोना ये है कि बच्चे बात नहीं मानते, यानी माएँ जितनी बैठी, मेरा नहीं ख्याल किसी माँ से पूछे बच्चों से राजी तो के, बस ये तो बात ही ना सुनते ही बड़ी बुरी हालत है, बाकी तो मेरे बच्चे बड़े अच्छे, ऐसी बात है। हम अल्लाह की कितनी बातें सुनते, पट 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 जुबान चल रही थी, अजान की आवाज़ आ रही थी, हम बच्चों को कहते हैं अजान का एहतराम करो, तो मेरे घर में भी एक अदद मेरा साहब दादा को हर वक्त कहेगा अजान की आवाज़ सुनते ही काम काज रोक दीजिए और अजान का जवाब दीजिए, हर वक्त हर किसी को छेड़ने के चक्कर में रहते, लेकिन हकीकत है हम खुद कितना इन चीज़ों का एहतराम करते हैं मुकद्दसात का। जैसे जैसे दीन आता है एहतराम बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। पिछले दिनों मैंने किसी से, हमारे वहाँ पहले शायद खुदा साहब ने भी जैसे आपके IRC में अलम लगा हुआ है, ऐसे एक बड़ा सा अलम लगा हुआ है, किसी को देखा वो जूते के साथ वहाँ उस छोटे से चबूतरे पर खड़ी है, तो मैंने देखा, मैंने कहा जूते के साथ तो एक तकद्दसात एक एहतराम होता था, कहती वाजिब है जूते का, मैंने कहा बाप का बाबूराज होता है, अगला जुमला खुद ही दिन में सोच लो अगला मैं क्या कहना चाहती, लेकिन हकीकत है हम सोचें कि हम अगर अल्लाह की इताअत करेंगे अल्लाह हमारी इताअत करवाएगा। और आखिरी चीज़, मेरा वक्त ख़त्म, आयतुल्ला बहजत मोहम्मद तकी बहजत फरमाते हैं, इबादत इताअत की तरफ ले जाती है उस शर्त पे कि दिलो ज़ुबान वसल हो। ये बहुत ही सख्त किस्म की चीज़ है, इसको इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और खुदा ने तौफीक दी तो कमिंग संडे बयान करूँगी कि दिल और ज़ुबान आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। मेरे पास एक सवाल भी है, इस सवाल का जवाब दे दो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरान कसम का कफारा क्या है? कुरान की कसम कौन सी होती है? कुरान की कसम तो वो होती है जो हम अल्लाह की खाते हैं, लिल्लाह बिल्लाह। कुरान की भी होती है, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, ये आप किसी फिक्ही टीचर से पूछें कुरान की कसम का कफारा क्या है। नमाज पढ़ने वालों के जो सजदे का निशान बन जाता है तो क्या रोज़े क़यामत वो मोमिन की अलामत नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ऐसा क्या है? और बकौल मोहसिन नकवी के शेरों के, कि हम तो दो दो निशान लेकर जाएंगे, एक सजदे का निशान और एक मातम का निशान, लेकिन बहुत लेट दिया अजीजम, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। आज मोमिन की अलामत होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम जो भी करेंगे हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। बहरहाल हमने अपने कियों का फल सहना है वहां पर। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन जरा, ऐसा नहीं है हमें इतनी छूट नहीं दी जाएगी कि हम यहाँ पर एक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी है, यकीनी सी बात है, नूर भी साथे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो किया है उसका उस नामे अमाल को भुगतना पड़ेगा। शब जुमा अगर हक अशआर मसलन आयमा की शाम में पढ़े जाए तो भी मना है कि तमाम आमाल का सवाब खत्म हो जाएगा, सिर्फ अशआर का सवाब मिल जाएगा। ये मुफातिहुल जुनान में है, इस बात की वजाहत कर दे हो सके। ये हर शब जुमा और जुमा के लिए, ये सिर्फ माह मुबारक रमजान के लिए। पहली बात है कि मुफाती की रिवायत रिवायत है, फिक्र हुक्म नहीं है। इसी के आप ला आगे सिस्तानी दामा जिल्लाली की तौजी में देखें तो दो कॉलम्स हैं मुस्तहब हौसलों के, एक वो जिन्हें आगा सिस्तानी ने एक्सेप्ट किया, एक वो जिनके लिए कहते हैं कि उलमा ने एक्सेप्ट किया, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। या आपको देखना पड़ेगा कि आगा सिस्तानी क्या कहते हैं, और रिवायतों से हुक्म को निकालना मेरा और आपका काम ही नहीं, ये काम मुश्तहिद का है, वही करें, अल्लाह मियां उनको तौफीक दे। और आज इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ अहादीस उनकी विलादत के सिलसिले में बयान कर दें। अब आप इतने लास्ट मोमेंट से मुझे कहती हैं तो मैं किस तरह से कुछ बयान कर दूं। एक तबरुकुल हदीस पढ़ती हूं। अगरचे आगे मेहदी पेशवाई ने सिराए पेशवायान में इन तीन आइम्मा के ज़माने को असर इख्तिनाक से ताबीर किया। असर इख्तिनाक समझते हैं आप, किसी को यूं कर दें, दम घोट दें, किसी का नवें दसवें और ग्यारहवें, नवें इमाम 25 साल, दसवें 42 और ग्यारहवें 28 ईयर्स। यानी बहुत ही जिसे कहना क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन थी, बहुत ही शदीद किस्म का दबाव और घुटन का जमाना था। लेकिन इमाम ने, मैंने थर्सडे को एक रिवायत पढ़ी थी एक नूर मुश्ताका ने नूर एसोसिएशन की डायरी, नूर की डायरी से किताब का रेफरेंस भी उन्होंने भी दिया हुआ था कि जब इमाम के आखिरी अय्याम थे ग्यारहवें इमाम के, तो उन्होंने इमाम जमाना को बुलाया और बुलाकर इमाम को बिशारत दी उन अंसार की कि मैं अपनी आंखों से गोया देख रहा हूँ कि तुम रुकन मकाम के दरमियान बैठे हो और लोग तुम्हारी बैत करने के लिए हाथों को आगे बढ़ा रहे हैं। इतने प्यारे जुमले हैं, सबसे ज्यादा प्यारा जुमला तबरुकन पढ़ूं और अब अच्छे बच्चों की तरह मैं भी जाऊं और आप भी इंशाल्लाह अपने घरों को जाएं। सबसे खूबसूरत जुमला जो है वो अमीर मोमिनीन का है कि गोया मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मस्जिद कूफा में तशरीफ फरमाते यौमुल खलास सुलेमान कामिल की किताब 30 times की किताब छपी है, 30 मरतबा। उसके अंदर ये बहुत ही प्यारी रिवायत है कि अमीर मोमिनीन कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ बैतुल मुकद्दस को, जुमे का दिन है, नमाजियों की सभी बन गई है। और इस साइड ने मरियम 33 साल नौजवान की सूरत में दो सुर्ख रंग के कपड़ों में लिपटी हुई है, रिवायत का जुमला है, मैंने नहीं उनके कपड़ों का रंग तय किया। और इस आलम में बैतुल मुकद्दस में दाखिल होते हैं कि उनके घुंघराले पानी से घुंघराले बालों से गुस्ल के पानी के कतरे टपक रहे हैं, और जब नवाजी के सफों को चीरते हुए वो मेहराब तक पहुंचते हैं, मेरा फर्जंद भी वहां पहुंच जाता है। मेरा फर्जंद आगे बढ़ के कहते हैं फसल ले जा रोहिल्लाह रोहिल्लाह नमाज पढ़ाइए। तो ईसा ने मरियम कहेंगे बलिस सलाह तो लखा या अपना रसूलिल्लाह, नमाज तो आपका हक है फर्जंद रसूल। और बस ईसा ने मरियम अदान में कामत देंगे और मेरे और आपके इमाम नमाज को का आगाज करेंगे जहाँ नबूवत के, जहाँ पर इमामत के कदम होंगे वहाँ नबूवत की पेशानी झुक जाएगी। क्या कहे इंसान, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही ज्यादा मुब्तला बेसवाल है, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कमी संडे में इसका जवाब आपकी खिदमत में जरूर दूंगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं भूल ना जाऊं, मुझे दर्स के शुरू में एक रिमाइंडर दे दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब तफसील से दे दूंगी। वाखिर दावा।